कृष्णा। तो आज मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा कि लिविंग विथ डिफरेंसेस, कि हम सब में मतभेद होते हैं, तो मतभेद होते हुए भी हम कैसे सहयोग से रह सकते हैं, इसके बारे में। तो भागवतम में दशम स्कंद में वर्णन आता है कि किस तरह से कृष्ण और बलराम बचपन से ही साथ में खेला करते थे, यद्यपि उनमें एक साल का फर्क था, और जिसके कारण जो बलराम जी को कृष्ण आदर दिया करते थे कि आप बड़े भाई हैं, पर फिर भी उनका जो रिश्ता बड़ा घनिष्ठ था, साथ में खेला करते थे, साथ में सब कुछ चीज़ें करते थे। और हम जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण लीला में जब कृष्ण गए थे वृंदावन के जंगलों में, तभी बलराम जी उनके साथ नहीं गए थे। कौन सी लीला है वो? ब्रह्म विमोहन, कई है, प्रधान एक ब्रह्म विमोहन लीला है। तो अभी अलग अलग जगह पे अलग अलग आचार्य बताते हैं कि कई बार ऐसे हुआ कि हमेशा कृष्ण और बलराम साथ जाया करते थे, तो कभी अगर कभी बलराम जी भी कृष्ण साथ नहीं गाते तो क्यों होता है ऐसे? तो एक बार बताते हैं वो कि मथुरा से कुछ वसुदेव से संदेश आया था और उनके कोई रिश्तेदार आए थे, इसीलिए वो, क्योंकि वो उस समय सबको पता नहीं था कि कृष्ण भी वसुदेव के पुत्र हैं, ब्रजवासियों को लग रहा था कि कृष्ण हमारा ही पुत्र है, यशोदा नंद का ही पुत्र है। तो जब वो आते हैं तो कृष्ण उनको प्रणाम करते हैं, थोड़ा बात करते हैं, तो कृष्ण चले जाते हैं, बलराम जी वहीं पर रहते हैं। दूसरा एक समय होता है जब कहते हैं कि बलराम जी वरिष्ठ होते हैं, उनको कुछ धार्मिक कार्य करना होता है, तो छोटा भाई आ सकता है, धार्मिक जो कार्य रीति रिवाज यज्ञ करना है वो बलराम जी को करना होता है। तीसरी बार बताते हैं कि एक बार जब कृष्ण बलराम जी तालवन में जाके धेनुकासुर का वध करते हैं, तो उसके बाद में कृष्ण आते हैं दौड़ लौट के, और जब कृष्ण आओ के लौट के बाकी से अपने यशोदा माई को, नंद महाराज को, बाकी से प्रजा से बताते, आपको पता है आज बलराम जी ने क्या पराक्रम किया, और बड़ा इस तरह से बढ़ा चढ़ा के वो भाव बनाते हैं, तो उन्होंने क्या पराक्रम किया, एक गधे को मार डाला। तो ये सुन के बलराम जी नाराज हो जाते हैं, और जब नाराज हो जाते हैं वो कहते हैं कि कृष्ण मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। तो कृष्ण और बलराम जो है उनके जो विचारों में कभी कभी भेद होता है, वह वृंदावन में कम होता है, वह वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन का भाव है रस, रस का आदान प्रदान चलते रहता है। तो आनंददान जपों में बताते हैं कि जब कृष्ण और बलराम सब वाले लौट के आते हैं, तो तभी सारे ब्रजवासी, जो वरिष्ठ ब्रजवासी होते हैं, वो सब गांव के बाहर आ जाते हैं कृष्ण का स्वागत करने के लिए, उतावले रूप से कृष्ण को देख रहे हैं, और सब सारे युवा गोपियाँ होती है वो सब अपने घरों के ऊपर जाती है, और उधर से वो इंतज़ार कर रही होती कृष्ण। तो अभी कृष्ण बलराम जो आते हैं, सारे सबसे पहले गैया आते हैं आगे, उनके पीछे सब ग्वाले आते हैं, और कृष्ण बलराम लास्ट में रहते हैं, अंत में रहते हैं, क्यों देख रहे कोई भी गैया रह न जाए इसलिए। तो अभी जब अंत में आ रहे होते कृष्ण बलराम होते हैं, फिर उनका सुदामा या सुबल होता है, तो तभी सारी गोपियाँ ऊपर से देख रही होती है, और भी गोपियाँ कृष्ण का दर्शन करना चाहती है, कृष्ण भी उनको देखना चाहते हैं, पर अब बड़े भाई हैं तो कृष्ण शर्माते हैं। तो फिर कृष्ण क्या करते हैं, एक युक्ति बनाते हैं, कहते हैं बलराम कृष्ण धीरे धीरे चलने लगते हैं, धीरे धीरे चले तो बलराम जी चलो अभी घर चलो मुझे भूख लगी है। कृष्ण कहते मैं बहुत थक गया हूँ, मैं धीरे धीरे आऊँगा, आप आगे जाओ।
फिर बलराम जी आगे चले जाते हैं,
फिर कृष्ण जब रहते हैं तो बलराम जी चले गए, तो कृष्ण
साहस लेते हैं, छुटकारे का साहस, और फिर वो
गोपियों को अपना दर्शन देते हैं, गोपियों का जो हृदय में प्रेम है उनका दर्शन करते हैं, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं दृष्टि के द्वारा, और फिर धीरे धीरे आगे जाते हैं। तो इस तरह से जो वृंदावन का रस है उसमें बलराम जी अलग अलग प्रकार से भूमिका करते हैं, कभी सहयोगी होते हैं, कभी किस तरह से होते हैं, उनके बड़े भाई का जो रस होता है वो होता है। तो उसके बाद में जब वे मथुरा जाते हैं, फिर मथुरा से द्वारका जाते हैं, तो मथुरा में जब होते हैं वो, तो तभी कृष्ण और बलराम, ये गोपाल चंपू में बताया है कि उनकी इच्छा होती है, वास्तव कृष्ण को राज्य करने की कुछ इच्छा ही नहीं होती है, कहते मैंने अभी कंस का वध कर दिया, मैं आ जाऊँगा वापस। पर तभी ये वसुदेव वसुदेव के परिवार वाले होते हैं, वो कहते हैं यदुवंशी कि देखो वसुदेव का आठवां जो पुत्र होगा, देवकी का जो आठवां पुत्र होगा वसुदेव देवकी का, वह कंस का वध करने वाला था, तुमने वध किया वो, मतलब तुम वसुदेव देवकी के पुत्र हो, तुम रजवासी नहीं हो, तुम मथुरावासी हो, और अभी तुमने कंस का तो वध कर दिया है, पर सारे कंस के जो सहयोगी थे उनको हम पे आक्रमण करने वाले, तुम्हें हम उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। और तभी कृष्ण वहाँ पे रह जाते, उनकी इच्छा नहीं होती रहने की, जाने की इच्छा होती है। तो अभी एक तरह से देखें तो कृष्ण तो भगवान है, कृष्ण सर्वज्ञ है, पर उस समय जब लीला कर रहे तो एक बिल्कुल छोटे बालक है, उस समय 10 साल के, अलग अलग आचार्य थोड़े अलग अलग उम्र बताते हैं, लगभग 10 साल के। तो भी कल्पना कीजिए, एक 10 साल का बालक है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वहाँ को कभी उनसे मिला नहीं है, कभी कुछ जानता भी नहीं है, छोटा बालक होता है, अगर से माँ अपने मैके लेके जाती है बालक को, अभी माँ भी होती है ऐसे, किसी को एक घर पे छोड़ के किसी को जानता नहीं है, वहाँ पे अकेले रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है वैसे। तो तभी कृष्ण वहाँ पे अकेले रह जाते हैं। तो अभी वो यशोदा को बचपन से माँ के नाम से बुला रहे हैं, तो अचानक वो देवकी को कैसे अपनी माँ बोल सकते हैं। तो वो जो कोई मित्र भी साथ में नहीं है, कोई माता पिता से भी संबंध तो जुड़ा हुआ नहीं है, और तभी कृष्ण के इकलौते साथ जो रहते हैं वो बलराम। और कई बार बलराम कहते हैं तो जो मथुरावासियों का हमेशा भय रहता है कि ये जे ये कृष्ण ये ब्रजवासियों ने कृष्ण को बहका दिया है, और शायद कृष्ण को वापस लेके चले जाएगा, हमको कृष्ण हमारे साथ चाहिए। तो इसीलिए वो हमेशा कृष्ण, जब कृष्ण कुछ वृंदावन के बारे में बोलने का प्रयास करते हैं तो वो बंद कर देते। और बलराम जी ये देख के बड़ा नाराज हो जाते हैं, तो ये ब्रजवासियों ने कृष्ण को बड़ा किया है, इतना उसका देखभाल किया है, वैसे क्यों कर रहे हो, बोले थे वो उन्होंने किया अच्छी बात है, पर अभी कृष्ण हमारा है, उसको यहाँ पे रहना चाहिए, वो उसकी याद क्यों कर रहे हैं। तो बलराम जी उनको काफ़ी मदद करते हैं तभी। पर बाद में जब बलराम जी बोलते हैं कि अभी मैं वृंदावन जाऊँगा, तुम वृंदावन क्यों नहीं जा रहे हो, तो मैं जाने की तो इच्छा, रोज मेरी इच्छा होती है, पर क्या हो रहा है, पर नंद महाराज ने मुझे बताया था कि जब तुम यहाँ पे हो तो वसुदेव के आदेश का पालन करो, और वसुदेव देव की वो उनके चेहरे, जब मैं वृंदावन की बात करता हूँ तो उनका चेहरा उतर जाता है, और मैं जानता हूँ कि वो मुझे इजाज़त नहीं देंगे, इसीलिए पता नहीं है। तो बलराम जी कहते हैं मुझे इजाज़त मिल जाएगी, मैं जाऊँगा, और तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊँगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि भागवत में वर्णन है, कृष्ण पहले कृष्ण उद्धव को भेजते हैं, इसके आगे बलराम जी स्वयं जाते हैं। तो इस तरह से मथुरा लीला में उनका जो उतना उतना भेद नहीं होता है, कृष्ण को कृष्ण को डांटते हो, कृष्ण तुम क्यों नहीं जा रहे हो, जब उद्धव आते हैं वापस सब सुनाते हैं कैसे गोपिया और ब्रजवासी विरह में हैं, कृष्ण को बोलते बलराम जी कृष्ण को बोलते हैं तुम्हें जाना चाहिए तुरंत, मैं कैसे जाऊँ, जाने की तो इच्छा है, तो मैं मेरे माता पिता का आदेश उल्लंघन नहीं कर सकता। तो बलराम जी स्वयं जाते हैं, और क्या है जो यशोदेव देव के होते हैं उनको लगता है कि बलराम जो है वह वास्तव में हमारा ही, वह हमारा पुत्र है, वो जानता भी हमारा पुत्र, बचपन से जानता है कि वो हमारा पुत्र है, वहाँ पर रह रहा था, तो इसीलिए वो जाएगा तो भी वापस आ जाएगा, उनकी बलराम जी की जो माँ होती है उधर ही होती है। तो इसीलिए अभी ऐसे जब होता है तो बलराम जी जाके आते हैं, और बलराम जी कृष्ण का जो मतभेद जो होता है सबसे ज़्यादा होता है वो दुर्योधन के कारण। तो अभी कृष्ण की इच्छा होती है कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हो जाए, और बलराम जी की क्या इच्छा होती है, दुर्योधन से हो जाए। अभी वास्तव में ये न केवल एक मतभेद है, ये विरुद्ध भेद है, बोल सकते हैं विरुद्ध मत है, दो अलग मत नहीं है, एकदम विरुद्ध मत है। किसी और राजा से विवाह के बाद होता तो अच्छा ठीक है हो सकता है, पर ये जो है बिल्कुल विपरीत है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वास्तव में कृष्ण और बलराम ये एक तरह से विपरीत रस का अनुभव कर रहे हैं। भगवान कृष्ण को कुछ कार्य करना है और वो तो भगवान है, हर एक कार्य आसानी से कर सकते हैं, तो वो कार्य में जब व्यत्यय आता है और फिर व्यत्यय को निकालते हैं वो, उससे उनको एक विशेष आनंद मिलता है। तो इसलिए बलराम जी उनको क्या कहते हैं, बलराम जी इस प्रकार की भूमिका करते हैं उनकी लीला में। तो अभी कृष्ण क्या करते हैं, बड़ी योजना बनाते हैं और अर्जुन को मदद करते हैं कि सुभद्रा को लेके जाए। तो बलराम जी इतने बड़े क्रोध हो जाते हैं, इसने हम सुभद्रा को भगा लिया, हम उनको सजा दे देंगे। तो तभी कृष्ण कहते हैं कि तुम सजा देना चाहते हो, किसको सजा दोगे? अगर तुम सोचते हो कि अर्जुन ने सुभद्रा को भगाया है, पर अर्जुन तो युद्ध कर रहा था, रथ वास्तव में सुभद्रा चला रही थी।
तो ऐसे नहीं कि अर्जुन ने सुभद्रा को लेके गए, वास्तव सुभद्रा की इच्छा थी अर्जुन से विवाह करने की।
तो ये सुनते तो बलराम जी आश्चर्य हो जाते हैं, क्या करने का।
तो फिर बाद में
जो कृष्ण है देखते हैं कि बलराम जी बड़े गुस्से हैं, तो बाकी सब वरिष्ठ जो होते हैं वहाँ पे उन सबको समझाते हैं कि देखो अर्जुन इतना इतना महान वीर है, इतना बड़ा योद्धा है, इतना अच्छा है, इससे अच्छा और मुझे सुभद्रा के लिए कोई मिलेगा नहीं। तो तभी धीरे धीरे बलराम जी भी मान जाते हैं। और जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला होता है तो दुर्योधन जानते हैं, तो उसके पहले क्या होता है कि जब वनवास में जाते हैं पांडव, वो भेजा जाता है, तभी बलराम भी बड़े क्रोध होते हैं। और पांडव के राज्य के बाहर में जब वो होते हैं तो कृष्ण और बलराम दोनों आते हैं, तो बलराम बड़े क्रोध हो जाते हैं, देखिए बड़ा अन्याय हुआ ये। पर उसके बाद में जब दुर्योधन से मिलना जाते हैं तो, और बाद में जब वनवास खत्म होकर आता है, तो बलराम जी का होता है भाव बदल जाता है। बलराम जी कहते हैं तभी कि देखो युधिष्ठिर, तुमने ही गलती की थी, तुमने ही जुआ खेला था, वैसे ज़बरदस्ती नहीं की तुमने, तुमने जुआ खेल के तुम ही हारे हो, तो इसीलिए तुम्हें अभी नम्रता रखनी चाहिए, तुम्हें सब्र रखना चाहिए। तो युधिष्ठिर खासकर भीम सोचना, ये क्या हो गया, पहले तो इतने क्रोधित थे, अभी ऐसे क्यों हो गया है? तो वास्तव में बलराम जी का जो भाव होता है वो क्या होता है कि कृष्ण की लीला को आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना है वो करते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण जी कहते हैं कि वास्तव में हमारे साथ अन्याय हुआ है, जो हुआ है वो क्या कर रहे हैं, जो दुर्योधन का पक्ष लेके, ऐसे नहीं कि वो गलत, दुर्योधन गलत है, पर वो दुर्योधन का पक्ष लेके वो खुद गलत मार्ग में नहीं जाते, वास्तव में क्या कर रहे हैं, वो कृष्ण की लीला में मदद कर रहे हैं एक व्यक्ति लाकर, ताकि लीला का रस और बढ़ सके। तो अभी ऐसा जब होता है तो बलराम जी क्या करते, तो कृष्ण क्या बोलते हैं, कृष्ण तभी शांत रह जाते हैं। पर कृष्ण कहते हैं कि मैं पांडव के पक्ष से सारथी बन जाऊंगा, और बलराम जी कहते हैं कि मैं तो कृष्ण के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता हूँ, तो मैं तीर्थ यात्रा में चला जाऊंगा। तो बलराम जी महान योद्धा होते और वहाँ पे सबसे बड़ा युद्ध चल रहा है, और उस सबसे बड़े युद्ध में क्या हो रहा है, वो तीर्थ यात्रा में चले जाते हैं। वो कैसे है, अगर आजकल के वातावरण से तुलना करनी है तो क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है और इंडियन टीम का सबसे बड़ा बैट्समैन है और जो मैच होने वाली है वर्ल्ड कप फाइनल जैसे मैच है, और तभी बोलता है कि मैं पिकनिक पे जा रहा हूँ तभी मैं आऊँगा ही नहीं मैच के। तो अभी बलराम जी तीर्थयात्रा के जाना अच्छा है, पर युद्ध के समय तीर्थयात्रा के जाने की जरूरत क्या होती है कोई कह सकता है। तो वो कह उनका भाव होता है कि मैं पांडवों के खिलाफ, मैं कृष्ण के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता, इसीलिए वो, और वो कहते हैं कि मैं कृष्ण के, मैं क्योंकि कृष्ण युद्ध, कृष्ण रण, कृष्ण भी ये युद्ध नहीं करने वाले हैं, युद्ध नहीं करने वाले मतलब, और शस्त्र नहीं उठाने वाले हैं, तो मैं भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और फिर उसके बाद में जब दुर्योधन का वध होता है तभी बलराम जी उस समय वापस आ जाते हैं, और तभी वो कृष्ण को, खास करके भीम को बहुत डांटते, भीम पे आक्रमण करने आते, कहते हैं कि तुमने जो है ये क्या किया है, तुमने गलत कार्य किया है, जो तुमने जो जिस प्रकार से वार किया है वो गलत है, आक्रमण किया है जो। तो तभी कृष्ण उनको समझा दे, देखो कि वास्तव में पांडवों के खिलाफ कितना अत्याचार हुआ था, सबका श्रृंखला बताते हैं, बोलते हैं कि उन सबका जो कर्म है उसका फल अभी उसको मिला है दुर्योधन को, कि उसका भी इस तरह से वध हुआ है। तो तभी बलराम जी क्या कहते हैं, बलराम जी कहते हैं कृष्ण तुम अपने वचनों से किसी को भी कुछ भी चीज़ समझा के उनको मना सकते हो, पर आई एम नॉट कन्विंस्ड, मैं मानता नहीं हूँ, और चल जाते हैं वहाँ से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उस अलग अनेक जगहों पर कृष्ण और बलराम में मतभेद होता है। तो अभी यह एक तरह से हम लीला के रूप में देख सकते हैं कि वास्तव में वो दोनों भगवान के ही रूप है, और क्या है वो दोनों केवल लीला रस के आसान बनाने के लीला कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम ये एक और भी चीज़ देख सकते हैं कि क्या है कि वे उनके ऐसे नहीं है कि उनके वो भाई है, मित्र है, और वास्तव में दोनों भगवान के ही रूप है, फिर भी ऐसे नहीं है कि उनके सब मत एक ही है, काफ़ी फर्क है उनके मतों में, और ये फर्क के कारण बहस भी होता है। तो हम जब दो व्यक्ति किसी साथ भी रह रहे हैं, तो किसी साथ भी संबंध रख रहे हैं, तो हम ऐसे अपेक्षा करेंगे कि वास्तव में हमारे मत सब चीज़ों में एक हो जाएंगे, ये कभी होने वाला नहीं है। अनेक चीज़ों में एक हो जाएंगे वो कभी हो सकता है, पर कई चीज़ों में अलग भी हो सकते हैं। तो हमें इवन लाइक माइंडेड डिवोटीज आर नॉट अलाइक, जो समान जो मनोवृत्ति के भक्त होते हैं वो भी समान नहीं है, कि हाँ डिवोटीज कैन बी सिमिलर बट दे आर नॉट आइडेंटिकल, कि हमें कुछ विचारों में हमें समानता हो सकती है पर कम एकता नहीं हो सकती। तो हम हर एक व्यक्ति जो है अलग है। तो अभी क्या है कि मान लीजिए मैं एक वर्तुल एक सर्कल हूँ और दूसरा व्यक्ति दूसरा सर्कल है, तो अभी हमारे हम ये जो दो सर्कल है इसमें कुछ चीज़ें इंटरसेक्शन में आती हैं, कुछ चीज़ें जो है वो एक दूसरे के जो रुचियाँ हैं, सेवाएँ हैं, वो सब उसमें समान होती है, और काफ़ी जो है वो अलग हो सकती है। तो 18वें अध्याय में भगवान जब ज्ञान के बारे में वर्णन करते हैं, 18वें अध्याय के 20 से 22 श्लोक तक वह अलग अलग प्रकार के ज्ञान के बारे में वर्णन करते हैं। अतः बताते हैं पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नाना भावान पृथक विधान व्यक्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम। जो व्यक्ति देखता है कि वास्तव में ये सब जो जीव है वह सबका अलग अलग शरीर है, इसका मतलब है ये सब अलग भाव है इनका और ये सब अलग जीव है, और इस तरह से वो कुछ समानता देखता ही नहीं है। मैं भारतीय हूँ, ये अमरीकी है, ये ऑस्ट्रेलियन है, और हम सब अलग हैं, हमें कुछ समानता है ही नहीं, ऐसे जो देखता है वो राजसिक ज्ञान है। और सात्विक ज्ञान क्या बोलते हैं भगवान कि सर्वभूतेषु एनैकं भावं अव्यवीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं, कि सब जीवों में वही एक अव्यय भाव है। अव्यय भाव क्या है? सब में आत्मा है, सबका आत्मा जो है वह भगवान का अंश है। वह जो विचार, वह जो दृष्टि है वह सात्विक दृष्टि है। अभी सात्विक दृष्टि में वास्तव भगवान क्या बोलते हैं, इतना ही बताते हैं कि वो जो सब में एक अव्यय भाव है जो समान है अभी, और वो अलग सबको अलग लगता है पर अलग नहीं है, वो एक ही है। तो ये जो है सत्वगुण में ब्रह्म ज्ञान आता है, और जो भक्ति का ज्ञान है वो क्या है, वो ज्ञान ये है। अभी चौथे अध्याय का 34वां श्लोक हम कई बार कोट करते हैं, कौन सा है जैसे पता है, तद्विधि प्रणिपातेन, देखिए गुरु के पास जाके हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो 35वें श्लोक में भगवान बोलते हैं वो ज्ञान प्राप्त करने का फल क्या होता है, यद ज्ञात्वान पुनर्मोहम एवं यासि पांडव येन भूतान्य शेषानि द्रक्षस्य आत्मन्य अथोमयी, कि जब ज्ञान प्राप्त कर लेगा ऐसे तो अर्जुन तुम मोह में नहीं जाओगे, और इस ज्ञान से आप देखोगे सब जीव जो है वो मुझ में है और वो मेरे है। ये न भूतान्य शेषानि द्रक्षस्य आत्मन्य अथोमयी, वो सब जीव मेरे है, मुझ में है और मेरे है, आत्मन्य अथोमयी। तो यहाँ वो आत्मा है, आत्मा के स्तर पर स्थित है और वो मुझ मेरे है। तो मतलब जो व्यक्ति को आत्मा के रूप में देखना ये, या आध्यात्मिक स्तर पर देखना ये सत्वगुण ज्ञान है, और व्यक्ति को भगवान का अंश के रूप में देखना यह दिव्य ज्ञान है। सत्व और शुद्ध सत्व है, दोनों में आध्यात्म है, पर आध्यात्मिक ज्ञान के और प्रगति हो रही है उसमें, दोनों में आध्यात्मिक दृष्टि है पर आध्यात्मिक दृष्टि और प्रगतिशील हो रही है जब हम दिव्य स्तर पर जाते हैं। तो इसलिए अगर हम हमारे में, हम सब में जो है भेद तो होगा, एक है भेद और दूसरा है मतभेद, कि भेद मतलब विविधता, हमारा तो अचिंत्य भेदाभेद, भेद मतलब फर्क। तो हम सब में तो भेद हैं, किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से दिखते हैं, किस तरह से चलते हैं, सब में भेद है। मतभेद मतलब विचारों में भेद होना, तो हम सब में भेद है तो हमारे मतों में भी भेद रहेगा, क्योंकि हम अलग अलग पार्श्वभूमि से आए हैं, अलग अलग विचारधाराओं के हैं। तो ऐसे नहीं जरूरी कि अच्छे संबंध होने के लिए हमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। क्या है ये मत जो शब्द है, भगवद गीता के कई श्लोकों में आता है कि ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानव श्रद्धावंतो न सूयंतो मुच्यन्ते देवी कर्म भी। भगवान कहते हैं कि यह मेरा मत है, जो श्रद्धा से मेरे वचनों का अनुशीलन करेगा वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो इसमें वो बता क्या रहे हैं कि ये जो मत है, यह भगवान भी कहते हैं ये मेरा मत है। और इसका मतलब है कि जब भगवान कह रहे हैं ये मेरा मत है, मतलब भगवान एक व्यक्ति है, वो उनका एक मत है। अभी एक तरह से कह सकते हैं कि भगवान का जो मत है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो परम सत्य है, वो तत्वज्ञान की दृष्टि सत्य है। पर व्यावहारिक दृष्टि से देखते हैं तो कई बार भगवान का एक मत होता है, दूसरे भक्तों का कुछ और मत होता है। क्या करना चाहिए? जब भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अश्वत्थामा का वध कर दो, अर्जुन सोचते मैं युधिष्ठिर के पास लेके जाऊँगा उनको, नहीं अभी वध कर दो, तुमने वध किया था, कहते नहीं मुझे युधिष्ठिर के पास लेके जाऊँगा, फिर बाद में हम देखते क्या करना है। यहाँ पर हम आचार्यगण बताते हैं कि भगवान अर्जुन का कितना धर्म का ज्ञान अनुशीलन किया है उसकी परीक्षा कर रही है। पर फिर भी हम बाह्य रूप से देखते हैं क्या है कि अर्जुन एक चीज़ बोल रहे हैं, भगवान एक चीज़ बोल रहे हैं, अर्जुन दूसरी चीज़ बोल रहे हैं, और भगवान भी ये जो व्यक्ति की स्वेच्छा है उसको स्वीकार करते हैं। यथा इच्छा से तथा गुरु, 18 अध्याय 63 श्लोक में भगवान बोलते हैं कि आपकी ऐसी इच्छा है वैसे आप करो। तो इसलिए भगवान और भक्त में भी हर चीज में, हर मत में एक होना जरूरी नहीं है। ऐसे भी क्या है, अर्जुन करिष्ये वचनं तव कहते हैं, अर्जुन शरणागत हो जाते हैं जब भगवान कहते हैं तुम ऐसे कार्य करो, युद्ध करो, अर्जुन कहते हैं हाँ मैं करूँगा। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान के वचनों से अर्जुन प्रभावित हो गए हैं और परिवर्तित हो गए हैं। और फिर भी अर्जुन का एक विचार होता है, भगवान का एक विचार होता है, और भक्ति में दोनों का विचार एक हो जाता है। पर इसके बावजूद ऐसे महाभारत में अनेक प्रसंग देखते हैं तो कृष्ण की एक इच्छा होती है, अर्जुन की दूसरी इच्छा होती है, और फिर क्या होता है। यहाँ पे भगवद गीता में हम उदाहरण देखते हैं कि भगवान कहते हैं अर्जुन से युद्ध करो, अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूँगा। यहाँ पे क्या होता है, अर्जुन भगवान की बात मान जाता है, कहते युद्ध करूँगा मैं। पर हम देखते हैं युद्ध के 13वें रात को जब अभिमन्यु के वध के बारे में पता चलता है तो अर्जुन व्रत ले लेता है, क्या कि मैं कल शाम तक जयदत्त का वध करूँगा, नहीं तो मैं अग्नि चला जाऊँगा। तो अभी तभी कृष्ण क्या कहते हैं उनसे, कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं, तुमने मुझे पूछे बिना ऐसा क्यों व्रत ले लिया, ये जयद्रथ को मारना आसान नहीं होगा। तो अभी अर्जुन क्या होते हैं, यहाँ पे वापस हम देख रहे हैं कृष्ण और अर्जुन में मतभेद है। तो कृष्ण अर्जुन क्या कहते हैं कृष्ण से, अर्जुन कृष्ण तुम्हारी चिंता मुझे समझ में नहीं आ रही है, तुमको मेरी शक्ति पता है और मुझे तुम्हारी शक्ति पता है, चिंता किस बात की। तो यहाँ पे पहले कृष्ण अर्जुन को थोड़ा डांटते, तुमने ऐसे क्यों किया, पर बाद में जब अर्जुन अपने व्रत पर जटे रहते तो कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण अर्जुन के पूरे सहभागी बन जाते हैं, और अगले दिन हर पल पे क्या होता है, कृष्ण अर्जुन को मदद करते हैं। ऐसे नहीं है कि कभी कभी क्या होता है कोई व्यक्ति दूसरा हम कुछ करने को बोलता है, हम बोलते मैं नहीं करूँगा, पर आपको जबरदस्ती करने को बोलते हैं तो बार बार को समस्या आती, मैंने बोला था तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण ऐसे नहीं करते अर्जुन के साथ, बाद में जब जा रहे होते बहुत समस्या आती है। तो जब बाद में 6 योद्धा एक साथ अर्जुन के सामने आ जाते हैं और उनको जयदत्त दिख रहा होता है पर पहुंच नहीं पा रहे, तभी अर्जुन ने कृष्ण अर्जुन से नहीं कहते, तभी क्या, अभी तुमने जो बात लिया था उसका भी कैसे करनी वैसे भरनी, ऐसे नहीं बोलते। तभी कृष्ण क्या करते हैं, अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करके सूरज को झकार ढक देते हैं और अर्जुन को मदद करते हैं अपने व्रत पूरा करने में। तो इसलिए अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कृष्ण और अर्जुन का संबंध है, तभी कृष्ण कुछ बोलते अर्जुन करते, कभी अर्जुन की कुछ इच्छा होती है कृष्ण उनको मदद करते उसमें। तो अर्जुन की इच्छा भी होती है कैसे है कि भक्त की इच्छा होती है भगवान की सेवा करने की ही, पर कई बार सेवा कैसे करनी है उसमें मतभेद हो सकता है। द डिजायर टू सर्व इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द डिजायर्स टू सर्व। द डिजायर टू सर्व मतलब क्या, सेवा करने की इच्छा है। तो अर्जुन को भी धर्म का युद्ध चल रहा है, उसमें अर्जुन की भी इच्छा है कि धर्म का विजय हो। तो किस तरह से अगर जयद्रथ को मार डालेंगे तो न केवल जयद्रथ का वध होगा, पर जो कौरव का जो मोरल है, उनका जो आत्मविश्वास है, उस पर बड़ा ठेस पहुंच जाएगा कि हम सारी सेना मिलकर एक योद्धा को बचा नहीं सके, हम क्या कर सकते हैं, क्या क्षमता है हमारी, कुछ रहे नहीं। तो अर्जुन ने सोचा जैसा करना चाहिए, और कृष्ण का तभी वो इच्छा नहीं थी, पर कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि अर्जुन का भी भाव क्या है, धर्म युद्ध ही करना है, और वो और प्रवृत्त हो रहे धर्म युद्ध करने के लिए। तो इसलिए जब भी क्या, कई बार क्या होता है, हमारे मतभेद होते हैं, तो हम जो कृष्ण को सेवा करने का भाव है उस पे जोर दिए बिना वो कृष्ण की सेवा किस तरह से कर रहे हैं, और मैं इस तरह से कर रहा हूँ, वो उस तरह से कर रहे हैं, और ये भेद हम ज़्यादा देख लेते हैं। और ये भेद के कारण क्या होता है कि हमें ऐसे लगता है कि जो व्यक्ति कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो भक्ति में प्रिंसिपल्स होते हैं और भक्ति में प्रेफरेंसेस होते हैं। प्रिंसिपल्स मतलब जो तत्व होते हैं मूल, प्रेफरेंसेस मतलब व्यक्तिगत, जो व्यक्तिगत रूप पे जो, व्हाट इज प्रेफरेंसेस इन हिंदी, दैट इज प्राइमरी, प्रेफरेंस, हाँ पसंद कह सकते हैं, पसंद एक्चुअली इज लाइक्स, थोड़ा वो ठीक है, पर ठीक है, व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि कुछ तत्व होता है और कुछ प्रेरणा होती है, मुझे ये करना है, ये महत्वपूर्ण है। तो क्या है, तत्व और प्रेरणा, ये दो चीज़ें अलग हैं। अभी जब करना ये तत्व है, पर जब कैसे करना है, कुछ लोग बैठ के जब करेंगे, कुछ लोग खड़े रह के जब करेंगे, कुछ चल के जब करेंगे, कुछ थोड़ा जोर से जब करेंगे, कुछ थोड़ा धीरे से जब करोगे, ये सब क्या है, व्यक्तिगत पसंद कह सकते हैं, पसंद ज़्यादा प्रवृत्ति या प्रेरणा या स्वभाव कह सकते हैं। कुछ लोग कीर्तन में जब नाचेंगे तो बड़े उत्साह से नाचेंगे, जोर शोर से नहीं, ऐसे तांडव कर रहे ऐसे लग रहे कुछ लोग नाचेंगे पर थोड़ा अलग पद से नाचेंगे और सॉफ्टली जेंटली नाचेंगे। तो ये सब क्या है, कीर्तन में नृत्य तो करना है, जब करना यह तत्व है, किस तरह से करना है यह क्या है, यह एक व्यक्तिगत रूप पे प्रवृत्ति है या प्रेरणा है या पसंद है। तो इसके कारण अभी यह तो एक ही चीज में हम अलग अलग पद्धति को करने की हम दे सकते हैं। वैसे शास्त्रों का अध्ययन भी हो सकता है, तो कुछ लोग शास्त्रों का अध्ययन अकेले करना पसंद करते हैं, कुछ लोग साथ में बैठ के, दो तीन लोग साथ में बैठ के पसंद करने का प्रयास करते हैं। तो यह क्या है, यह व्यक्ति का जिस तरह से हमें देखना है, भक्ति करते समय हमें एक ही चीज प्रधान रखनी है, अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जन, कि जो मेरे लिए अनुकूल है मैं स्वीकार करूंगा, जो प्रतिकूल है वो मैं उसको दूर रखूंगा। और हमें समझना है कि जो मेरे लिए अनुकूल है वो किसी और के लिए भी अनुकूल होना जरूरी नहीं है। इंग्लिश में कहावत है, द शू दैट फिट्स वन लेग बाइट्स अनदर लेग। वह जो जूता एक पैर में अच्छा फिट होता है दूसरे पैर को काटता है, क्यों, क्योंकि भाई जो अलग अलग पैर अलग अलग साइज के हैं। उसी तरह से भक्ति में ये कार्य है, तत्व तो सब समान है, पर उसमें क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग मानसिकता है, अलग अलग स्वभाव है, तो जो चीज़ मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है किसी और को उससे उतनी प्रेरणा नहीं मिल सकती है। तो इसीलिए मैं जिस पे जोर दे रहा हूँ, जो मुझे बड़ा महत्वपूर्ण लगता है, वो किसी और को उतना महत्वपूर्ण नहीं लगेगा, कभी ऐसे हो सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जब हम भक्तों के साथ रहते हैं तो तत्व पे अधिकांश रूप से कोई बहस नहीं होता है। कोई भक्त नहीं कहने वाला है कि आप आत्मा नहीं है, शरीर हो आप। कोई भक्त नहीं कहने वाला है कि भगवान का रूप नहीं है, भगवान निराकार है। तो ये मूल तत्वों पे कोई मतभेद नहीं होने वाला है, पर उसमें किस तरह से सेवा करनी है, किस तरह से प्रचार करना है, किस चीज़ों को मुझे मेरी साधना में जोर देना है, उसमें हमें भेद हो सकता है। तो हम क्या होता है कि द डिवोटी सोसाइटी इज ऑफन अ वेरी इंसुलर सोसाइटी। इंसुलर मतलब क्या है कि भक्त जब, खासकर जब ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचारियों के बीच में रहते हैं, दूसरे लोगों के साथ हम इतना रहते नहीं है, तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण सारे जो भक्त है हम देखते हैं कि मुझ में और इसमें इतना फर्क है, ये बोल रहा है मैं ये बोल रहा हूँ, पर हम देखेंगे कि हम दोनों जो है, हम दोनों में और दुनिया में कितना फर्क है, और अगर दुनिया से तुलना करेंगे तो हम में और उनमें कितना समानता है। तो अगर हम 100 चीज़ें देखेंगे तो उसमें से मुझ में और उनमें 2 चीज़ों में फ़र्क होगा, पर दुनिया की कुछ चीज़ें देखेंगे तो 98 चीज़ों में एक्चुअली समान है। तो क्या होता है कि अभी भक्ति में कुछ वैल्यूज़ होते हैं, वैल्यूज़ मतलब कुछ मूल्य होते हैं। तो अभी ये वैल्यू शब्द है, इसका ये इंग्लिश में एक नाम भी है और एक क्रियापद भी है, वैल्यूज और वैल्यू, मूल्य और किसका हम किसको हम कितना मूल्य देते हैं, दोनों हैं। तो क्या है कि अलग अलग लोगों, डिफरेंट पीपल वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंटली, अलग अलग लोग अलग अलग मूल्यों को अधिक मूल्यवान बोलते हैं। तो मान लीजिए अभी एक तरह से अगर हम देखते हैं कि ऐसे कुछ लोग थोड़े कॉन्जर्वेटिव होते हैं, कुछ लोग लिबरल होते हैं। वे कॉन्जर्वेटिव और लिबरल को हिंदी में क्या बोलेंगे? लिबरल मतलब जो ऐसे लोग होते हैं कि हमें एडजस्ट करना चाहिए सब टाइम के अनुसार, कॉन्जर्वेटिव नहीं, जैसा है वैसा कुछ वैसे ही रखना चाहिए। तो अभी वास्तव में अगर हम देखेंगे कि भक्ति के मूल्य जो है उसमें सब सब का समान ही है कि सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सब भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, कोई भी कितना भी लिबरल हो वो किसी और देवता के नाम का जप नहीं करने वाला है, कोई भी लिबरल हो, तो सब जो मूलभूत मूल्य है उसको, उसके बारे में कोई मतभेद नहीं होता है। पर जो लोग कॉन्जर्वेटिव होते हैं, जो सब कुछ वैसे का वैसे रखने का प्रयास कर रहे थे, तो वो क्या सोचते हैं कि फॉर देम कॉन्फॉर्मिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कॉन्फॉर्मिटी मतलब जो पहले था वैसे ही रखना है, और जो लोग लिबरल होते हैं उनके लिए सेंसिटिविटी इज इम्पॉर्टेंट कि ये दुनिया को दिखता कैसे है, दुनिया इसके बारे में क्या सोचने वाली है। अभी दुनिया उसके बारे में क्या सोचने वाली है, बोले हमको परवाह करें, पर ऐसे नहीं है, हम इसी दुनिया में रह रहे हैं। अभी मैं जब अमेरिका में आया तो मुझे बताया था कि वहाँ पे भक्तों ने ऐसा नियम बनाया है कि एयरपोर्ट में किसी को रिसीव करने जाएंगे तो कभी किसी को प्रणाम नहीं करने का, रास्ते पे होगे तो कभी किसी को प्रणाम नहीं करने का, इन जनरल पब्लिक में किसी को प्रणाम नहीं करने का। अभी कोई सन्यासी आया, गुरु आया, कैसे उनको प्रणाम नहीं कर सकते, करना चाहिए प्रणाम। पर कई जगहों पर ऐसा, खास करके जहाँ पर पाश्चात्य लोग भी आते हैं, दृष्टि में आते हैं, आप पब्लिकली प्रणाम मत करो। क्यों? क्योंकि क्या है कि अमेरिका में पहले गुलामी थी, और ख़ास करके जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे, जो काले लोग थे, उनको भी अफ्रीकन अमेरिकन बोलते हैं, तो वो गुलाम थे। और उस समय ऐसी पद्धति थी कि जब भी मालिक आएगा तो गुलाम को उसको प्रणाम करना है। तो लोगों को ऐसे लगता है कि अगर कोई भक्त बन गया मतलब वो गुलाम बन गए। तो अभी भक्ति में जैसे वो गुलामी के शोषण होता था, वैसे कोई शोषण होता नहीं है, ये स्नेह का संबंध है। सब भक्ति में जो है सब वॉलंटियर्स है। तो अभी जो लोगों के लिए कॉन्फॉर्मिटी जो पहले था वैसे रखना ही जरूरी है, तो बोले दुनिया दुनिया का कोई परवाह क्यों कर रहे हो, आप प्रणाम करो। तो जो लोग बोलेंगे सेंसिटिविटी, हम दुनिया में रह रहे हैं, हमें देखना चाहिए कौन सा क्या, कौन से लोग क्या कर रहे हैं और लोग क्या सोचने वाले हैं, और उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। तो वो लोग कहे कि ठीक है आपको प्रणाम करना है मंदिर में, जब भक्त हो गए तो उनके सामने प्रणाम करो, मंदिर में आएगा पब्लिकली मत करो। तो अभी अरे तुम्हारे गुरु आए, तुम्हें प्रणाम ही नहीं किया, तुम क्या है, किस प्रकार के शिष्य हो, तुम डिवियंट बन गए, डिवियंट बन गए अभी। सर वो डिविएशन नहीं है। तो क्या होता है, ये जो मूल्य है, कोई व्यक्ति कॉन्फॉर्मिटी को ज़्यादा मूल्य दे रहा है, कोई व्यक्ति सेंसिटिविटी को ज़्यादा मूल्य दे रहा है। और ऐसे नहीं है कि जो कॉन्फॉर्मिटी को ज़्यादा मूल्य दे रहा है वही ज़्यादा फेथफुल है, वही ज़्यादा श्रद्धावान है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे परंपरा में भी जो सेंसिटिविटी है उसको भी महत्व दिया गया है। मैं तीन उदाहरण दूंगा इसके लिए, चैतन्य महाप्रभु के समय में और फिर हमारे आचार्य के समय में, प्रभुपाद जी के समय में। चैतन्य महाप्रभु के समय में कई उदाहरण देखते हैं वास्तव में इसके, किस तरह से कि जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो उन्होंने हरिदास ठाकुर को नामाचार्य का पद दिया, पर फिर भी उन्होंने क्या किया, जोर नहीं दिया कि हरिदास ठाकुर को जगन्नाथ मंदिर में लेके जाए। तो कहता ये तो रूढ़ी है, ये कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, भक्त होगा तो भक्त को अंदर जाने देना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या फैसला किया कि मुझे वो युद्ध अभी नहीं लड़ना है, मुझे भक्ति का प्रचार करना है। अगर ये ब्राह्मण संस्कृति में ऐसे लोग हैं, ऐसे ही धारणा है उनकी, तो मुझे ये युद्ध नहीं लड़ना है। तो इवन लॉर्ड चैतन्य चोज विच बैटल्स टू फाइट, क्योंकि तभी अगर वो उस एक और उदाहरण दे सकता हूँ, जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में आए थे तो तभी वो वाराणसी में जब रह रहे थे तो वे चंद्रशेखर आचार्य के घर में रह रहे थे। तो चैतन्य चरितमानस में वर्णन आता है कि रोज प्रसाद के लिए वे तपन मिश्रा के घर में जाते थे। अब ऐसे क्यों, मान लीजिए अगर कोई हम किसी के गृहस्थ के घर में रह रहे हैं कोई सन्यासी, और उस गृहस्थ के घर में प्रसाद देता ही नहीं, किसी और भी आके घर में प्रसाद देता है, वो गृहस्थ को इतना बुरा लगेगा। चैतन्य महाप्रभु ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि उस समय ऐसी अपेक्षा थी खास करके ब्राह्मणों की, सन्यासियों की, उस संस्कृति की, कि ब्राह्मण कोई सन्यासी ने ब्राह्मण के घर में ही प्रसाद लेना चाहिए। और चंद्रशेखर आचार्य ब्राह्मण नहीं थे, तपन मिश्र ब्राह्मण थे। तो वहाँ पर वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु के दो अनुयायी थे, चंद्रशेखर आचार्य और तपन मिश्र। चैतन्य महाप्रभु दोनों को अपना संग लेना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे घर में रहूँगा चंद्रशेखर आचार्य को, और मैं तुम्हारे घर में प्रसाद लूँगा। चैतन्य महाप्रभु कह सकते थे कि ये तुम्हारे जो विचार है ये भौतिक है, जो भक्त होते हैं वो ब्राह्मण से भी ऊँचे होते हैं, भक्त के घर में प्रसाद क्यों नहीं लूँ मैं। तो चैतन्य महाप्रभु फैसला किया मैं इसके बारे में ये युद्ध नहीं लड़ूंगा मैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या क्या एक तरह से दिखाया, आप उसको कह सकते हैं कि जो ब्राह्मण संस्कृति थी उसकी दृष्टि से उन्होंने कॉन्फॉर्मिटी किया, उसके अनुसार कार्य किया, और उन्होंने उसी तभी क्या किया, सेंसिटिविटी दिखाया उन्होंने। अच्छा तुम्हारे इन लोगों का ऐसे विचारधारा है तो उनको अगर वो सोचेंगे कि मैं, वो ये नहीं सोचेंगे कि वो ये नहीं देखने वाले हैं कि ये इतने महान भक्त है और ये भक्त होने के कारण उसके घर में प्रसाद दे रहे हैं, वो सोचेंगे कि ये सन्यासी ऐसे है, इसको शुचि क्या है मुची क्या है पता नहीं है, इसीलिए ये कहीं भी प्रसाद दे देता है। और इस तरह से अगर उनका आदर कम हो जाएगा, लोग वो मायावादी लोग उनका आदर देंगे तो वो उनसे बातचीत नहीं कर पाएंगे, मायावाद के सिद्धांत हैं, तत्वज्ञान के आधार पर उसका खंडन कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि इसके बारे में मैं चिंता नहीं करूँ, इसके बारे में ये युद्ध नहीं लड़ूंगा मैं। चैतन्य महाप्रभु जो तो उस समय के संवेदनशील थे, तो अभी उस तरह से हम देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने जब अपना प्रचार चालू किया तो उन्होंने क्या किया, कई अद्भुत कार्य किए उन्होंने। तो उनमें से एक कार्य जो था, उन्होंने तभी जो अपने ग्रंथ लिखना चालू किया, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर गृहस्थ थे और वो उनको अपनी जिम्मेदारी थी, नौकरी थी, तो वो क्या करते थे, बहुत से ग्रंथ लिखते थे और उनके ग्रंथ और मासिक लिखते थे। अब बंगाल और उड़ीसा में जहाँ भी जाते थे वो कभी प्रवचन दिया करते थे, लोग प्रभावित हो जाते थे, और फिर बाद में उनका एक मंथली सब्सक्रिप्शन होता था। तो उनके जो अनुयायी थे उनका प्रधान संघ जो था, क्योंकि वो भक्तिविनोद ठाकुर से ट्रैवलिंग प्रीचर नहीं थे, वो अलग अलग जाकर प्रचार नहीं करते थे, उनको नौकरी थी, तो वो क्या जहाँ भी जाते थे वहाँ पर थोड़ा प्रचार करते थे, पर ट्रांसफर हो जाते थे बाद में दूसरी जगह पर जाके प्रचार करते थे। और जो पहली जगह थी उससे संबंध था उनका लिखना से। जब उन्होंने ग्रंथ लिखना चालू किया तो उन्होंने क्या किया, कुछ ग्रंथ बंगाली में लिखे, कुछ ग्रंथ अंग्रेजी में लिखे। और उन्होंने जब मैगजीन चालू किया तो उन्होंने क्या देखा कि अंग्रेजी में अगर लिखे गए हम ग्रंथ, तो उस समय क्या था, कई लोग ऐसे सोच रहे थे कि अंग्रेजी म्लेच्छ भाषा है और इस भाषा में वो क्या लिखना है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हम जो ब्राह्मण है संस्कृत में लिखेंगे, हम जो आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो व्यवहारिक भाषा में क्या जरूरत है, हम दिव्य भाषा में देंगे, आध्यात्मिक भाषा में देंगे। पर आध्यात्मिक भाषा में वो ज्ञान जो था वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता था, तो उन्होंने न केवल ग्रंथ अंग्रेजी में लिखे पर कई बार उन्होंने जो अंग्रेजी पद्धतियाँ थी, पद्धतियाँ मतलब क्या कि भारतीय जो आजकल के ज़माने में हम कादंबरी कहते हैं, नॉवेल कहते हैं, उस प्रकार के नॉवेल जो थे वो भारतीय संस्कृति में नहीं थे। भारतीय संस्कृति में ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, और फिर अलग अलग शकुंतला वगैरह ग्रंथ है, पर वो ये एक वांग्मय का विषय है, पर वो जो नॉवेल्स है वैसे नॉवेल्स नहीं है। ये नॉवेल जो फॉर्मेट है कादंबरी से हम कहते हैं, वह अमेरिका से आया था, सॉरी ब्रिटेन से आया था, वो यूरोप से आया था। तो उन्होंने क्या किया, उस पद्धति को इस्तेमाल किया और जैव धर्म या चेतन नॉट चेतन जैव धर्म और दो ग्रंथों ने लिखे ऐसे, जैव धर्म और फिर प्रेम प्रदीप, दो ग्रंथ ऐसे लिखे जिसमें क्या है पूरे जो नॉवेल होता है, जो एक कादंबरी की पद्धति होती है उसको इस्तेमाल किया। तो उसके पहले हमारे वैष्णव संप्रदाय में किसी ने ऐसे नहीं किया है। तो उन्हें क्यों किया ऐसे, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था कि अभी कोई कहेगा कि पहले तो संस्कृत में ज्ञान था तो बंगाली में ज्ञान था, मैं उसी में दूंगा, और जो उस पद्धति में नहीं है ये पद्धति में दूंगा ही नहीं मैं। तो ठीक है, उससे क्या होगा, आप कॉन्फॉर्मिटी रख सकते हो, पर क्या है आप लोगों के पास पहुंच नहीं सकते। और दोनों महत्वपूर्ण है कि हमें कनेक्ट भी करना है जो परंपरा है उससे, पर हमें साथ दूसरों के साथ भी रहना है, जो समाज में है समाज के पास तक भी पहुंचना है हमको। तो उसी तरह से श्री प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो अमेरिका में जाके उन्होंने क्या किया, एक बार एक हिप्पी आया उनके पास, उनका स्वामी जी ये वैकुंठ का सुख कैसे है। प्रभुपाद जी क्या बोले, वैकुंठ का सुख ये एक LSD के सागर के समान है। अभी कोई कह सकता है कि ये तो एक अपराध, नाम अपराध है, नाम अपराध है कि कोई भौतिक तुलना नहीं करनी चाहिए भगवान के नाम से, भगवान के नाम से। और यहाँ पे भौतिक क्या तुलना, भौतिक में भी तामसिक तुलना कर रहे हैं। पर यहाँ भाव क्या है, द पॉइंट इज नॉट टू गेट इट राइट, द पॉइंट इज टू गेट इट अक्रॉस, कि हमको सिर्फ सब कुछ सही बोलना है। मान लीजिए हम कोई कॉलेज में जाते हैं प्रवचन देने के लिए और जाके पूरा संस्कृत में प्रवचन दे देते और सब कुछ सही बोलते हैं, वी गॉट एवरीथिंग राइट, वी गॉट नथिंग अक्रॉस, सब कुछ सही बोला पर कुछ भी पहुंचा नहीं लोगों के पास, लोगों का फायदा क्या हुआ। हमको सिर्फ सही ज्ञान नहीं देना है, हमको सही ज्ञान इस तरह से देना है कि लोगों तक पहुंच सके, लोगों को समझ सके और लोग कृष्ण की ओर आकर्षित हो सके। तो अभी वो जो प्रभुपाद जी वहां पे गए तो उस व्यक्ति का जो हिप्पी था उसकी सुख की परिभाषा थी कि सुख मतलब LSD लेना। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, भक्ति का सुख था वो उसकी भाषा में उसको समझाया और इस तरह से उनको भी आकर्षित किया। तो अभी हम जब भक्तों के साथ रहते हैं तो मतभेद क्यों होते हैं, क्योंकि हम जो हम किसी चीज किसी मूल्य को बहुत मूल्य देते हैं और वो किसी और मूल्य को बहुत मूल्य देते हैं। तो इस समय अगर हम समझेंगे कि ठीक है ये मूल्य अलग है, इसमें हमको मतभेद है, पर वास्तव में जो मूलभूत मूल्य है, भक्ति के मूल्य है, भगवान के भक्ति के मूल्य है, भगवान को हमारा जीवन समर्पण करने का मूल्य है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो कई बार हमें सेवा करनी होती है तो हमको इच्छा होती है मैं ऐसी सेवा करना चाहता हूँ, और कोई कहता है कि नहीं हमको ऐसी सेवा करनी है, तो ये एक व्यवहारिक है, बोले नहीं सही है, नहीं ये सही है। तो हमें क्या करना है कि तीन चीज़ें होती हैं, लीड, फॉलो और गेट आउट ऑफ द वे। अगर आप नेतृत्व कर सकते हो, कोई खुद का डिपार्टमेंट है, खुद का प्रोग्राम है, खुद का प्रोजेक्ट है, वो चालू करो आप, और उसमें अगर हमको इच्छा है कि मुझे इस तरह से ही कार्य करना है तो खुद में नेतृत्व लेने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। उसके लिए वास्तव में बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, आसान नहीं है वो करना। अगर हम लीड नहीं कर सकते हैं तो फॉलो, और ऐसे नहीं कि जो लीडर बड़ा है और फॉलोअर कम है, हम हर पद्धति से योगदान कर सकते हैं, बड़ा योगदान भी कर सकते हैं। कि फॉलो मतलब जैसे बोला वैसे करो, बुद्धि का इस्तेमाल करो, समझो कि ऐसे करना है, बट फॉलो, जब मतभेद होता है तो हम फॉलो करते हैं। और महत्वपूर्ण क्या है, गेट आउट ऑफ द वे। अगर कोई कुछ और कर रहा है मुझे वो जमता नहीं है, तो उसके बीच में मुझे टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है। अगर वो गलत है तो वो उस भक्त के और उसके अथॉरिटीज के बीच में, मैं शायद मुझे चाहिए तो उसको एक बार वो भक्त को बोल सकता हूँ, मैं चाहिए तो एक बार उसके अथॉरिटीज को बोल सकता हूँ, पर उसके बावजूद अगर वो वैसे ही कर रहा है तो भगवान उसको देख लेंगे। क्या होता है कि अगर हमेशा हम एक दूसरे का दोष निकालते रहेंगे, ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, तो क्या होगा, उससे सब नकारात्मक भाव आ जाएगा। नकारात्मक भाव जब आ जाएगा तो फिर कोई कुछ करने की इच्छा नहीं लगेगा, सबकी क्या, सबका क्या भाव हो जाएगा, जो भी कुछ कर रहा है उसको शूट डाउन करो, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो हमें देखना है सब इस पॉइंट के साथ मैं अंत करता हूँ कि हमें जब भक्ति, हमें भक्ति में अपने भगवान को जीवन समर्पित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि मैं किस तरह से भगवान की सेवा आजीवन कर सकता हूँ। और हम अलग अलग सेवाएं करते रहेंगे, पर अलग अलग सेवाएं करते समय हमें देखना है कि कौन सी सेवा में मुझे प्रेरणा मिलती है, किस वातावरण में मुझे प्रेरणा मिलती है, क्या 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 सेवा है, क्या मनोवृत्ति है, कैसा संघ है जिसमें मुझे प्रेरणा मिलती है, और मैं उसके लिए जो अनुकूल है वो स्वीकार करता हूँ, उसके लिए प्रतिकूल है उसको दूर रखता हूँ। हमको दुनिया को बदलना है, तो दुनिया को बदलने के पहले हमको क्या करना है, हमारे हृदय में भगवान को लाना है, हमारी जो भक्ति है उसको सुदृढ़ करनी है। तो इसीलिए हमारी प्राथमिक जो इस पर देते हैं कि मैं किस तरह से भक्ति में स्थिर हो सकता हूँ। शुरुआत के सालों में तो हम यही जरूरत है कि फॉलो, कि आपको जो आदेश दिया है, आपको जो उपदेश दिया है, जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसको फॉलो करो। पर उसके बाद में ऐसे करते करते क्या होगा, हमको भी समझेगा कि अच्छा ये इसमें क्षमता मुझे अच्छी है, इसमें मुझे रस मिलता है, इसमें मैं अच्छा योगदान कर सकता हूँ, उससे हमको भी प्रेरणा मिल सकती है। तो हमारे वरिष्ठों के मार्गदर्शन के साथ हम फैसला कर सकते हैं मुझे ऐसी सेवा करनी है। पर जब हम सेवा करना चाहते हैं किसी पद्धति से, तो उस समय कोई और दूसरी पद्धति सेवा कर रहा है, तो ऐसे नहीं है कि हम दोनों का अलग भाव है किससे सेवा करना है, इसलिए हम दोनों भी शत्रु बन गए, नहीं। वो एक तरह सेवा कर सकते हैं, हम दूसरी तरह सेवा कर सकते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, और दुनिया बहुत बड़ी दुनिया में जो हम भक्त इतने छोटे हैं, तो क्या है, हम अलग अलग जगह पर जाकर प्रचार कर सकते हैं, अलग अलग पद्धतियों से प्रचार कर सकते हैं। और हमें जब ये समझ लेंगे मुझे, मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। अगर हम सोचते हैं कि मेरी सेवा है कि सब गलत मार्ग पर जा रहे हैं, उनको सही मार्ग पर लाना है, तो या अगर हम अथॉरिटी है तो भी हमको ये बड़े सावधानी से करना है। अगर हम अथॉरिटी नहीं है, अगर हम सेल्फ अपॉइंटेड अथॉरिटी बन जाती है, खुद को इतना बना दो क्या, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, तो भले ही वो लोग गलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारी सेवा क्या है, ये गलत कर रहे, ये गलत कर रहे, ये गलत, तुम्हारी सेवा क्या है, सब क्या गलत कर रहे हैं वो दिखाना, इसकी सेवा, ये तो सेवा नहीं है, भगवान गलत है। अपैशुनम, एक दैवी प्रवृत्ति का भगवान एक गुण बताते हैं कि आप जो दैवी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो दूसरों में दोष देखना पसंद नहीं करते। अपैशुनम, एवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग, प्रभुपाद जी उसको भाषांतर करते हैं कि उनको न तो रुचि आती है कि दूसरों को दोष देखने में, उनको दोष होगा तो भी दिखाने में उनको कोई रुचि नहीं लगती, टालते हैं दूसरों को दोष देखना। अन्य निंदादि शून्य रुदन इक्षित संदुर्लभ्या, दूसरों की निंदा नहीं करनी है। अभी किस कोई कुछ पद्धति से कार्य कर रहा है जिससे मुझे समस्या हो रही है, मतलब मेरी सेवा में जानी जम रहा है, मुझे समस्या सेवा में समस्या हो रही है, तो हम कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि ठीक है तुम ऐसे यहाँ पे इस तरह से करो, मैं यहाँ पे इस तरह से कर सकता हूँ, प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। पर महत्वपूर्ण यह है कि हमारा भाव ये नहीं होना चाहिए कि ये गलत कर रहा है, मुझे उसकी हम उसका दोष देखने में, उसकी निंदा करने में हमारा सारा मानसिक शक्ति चली जाती है। ठीक है, अगर वो गलत कर रहे हैं, अगर मुझे लगता है गलत है, मैं रिपोर्ट कर दूंगा, पर उसके बाद में वैसे ही कर रहे हैं तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी क्या है कि मेरी चेतना भगवान में लगाए रखना और भगवान के सेवा में अग्रसर होना। इस तरह से जब हम करते हैं तो हम तो मतभेद तो रहेंगे, पर हम देखेंगे कि मेरा उद्देश्य जो है वह मैं पूरा कर रहा हूँ, और वो दूसरे भक्त हैं अलग पद से वो उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। तो मैं जब भी अमेरिका में गया था तो मैं एक बहुत ही वरिष्ठ भक्त, मेरा सन्यासी गुरु है वो, तो वो पहले से वो बहुत ही हार्डलाइन थे, बहुत ही फेथफुल है, बहुत ही प्रामाणिक है, बहुत ही श्रद्धालु है, पर बहुत हार्ड लाइन थी। हार्ड लाइन मतलब ये गलत है बोला। तो जब उनसे मिला तो अभी वो काफ़ी वृद्ध हो गए, उनको थोड़ी बीमारी हो गई, तो मैं उनसे बात कर रहा था, बोले कि अभी मुझे साक्षात्कार हो, मुझे लगता है कि प्रभुपाद जी ने हमको अनेक अनेक आदेश दिए हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, पर प्रभुपाद जी ने हमको क्या बताया है कि आप मुझे प्रेम कैसे दिखा सकते हैं, बाय कोऑपरेटिंग। तो अगर कोई किसी ने 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल भक्ति की है और उनको प्रेरणा मिल गया इस तरह से सेवा करनी, तो मुझे लग रहा है ना, मुझे भले ही नहीं समझ में आ रहा कि वो इस तरह से सेवा कैसे कर सकते हैं, कि मुझे समझ में नहीं आता है, पर मुझे प्रभुपाद में श्रद्धा है, मुझे कृष्ण में श्रद्धा है, उन्होंने कृष्ण की इतनी भक्ति की है, अगर कृष्ण उनको किसी तरह से प्रेरणा दे रहे हैं तो मैं उसके बीच में नहीं आऊँगा, हमें कोऑपरेट करना है। अगर किसी में कुछ गलत भी है तो वो प्रभुपाद जी की, वो कृष्ण की जिम्मेदारी है उनको सही मार्ग में मिलाना। मुझे क्या करना है, मुझे मेरा संबंध प्रभुपाद जी से, कृष्ण से मुझे अच्छा रखना है और मुझे उनकी सेवा करते रहना है। और महत्वपूर्ण हम सब के लिए ये है कि हम ये समझें कि मैं यहाँ पे मैं क्या कर, मैं मेरी भक्ति करने के लिए आया हूँ, मैं दूसरों के जो दूसरों के जो दोष है वो देखने के लिए नहीं आया हूँ। भले ही दोष है, भले ही दोष सही हो सकते हैं, समस्या ये होती है कि कई बार जो हमें दोष लगता है वो शायद दोष नहीं हो सकता है, कई बार दोष होगा तो भी वास्तव में वो व्यक्ति को दोष नहीं लगता है, या भला ही वो दोष हो फिर भी व्यक्ति वो दोष को अभी सुधार नहीं पा रहे, तो फिर क्या करें, उसके गाँव में वो सेवा करते रहेंगे और धीरे धीरे वो दोष चला जाएगा। तो इसलिए हमको तरोरपी सहिष्णुता, तृणादपी सहिष्णुता, तरोरपी सहिष्णुता, ये क्या है, इसका मतलब क्या है वास्तव में, हम जो कई बार बोलते हैं कीर्तन ये सदा हरि इससे होगा, तो अगर ऐसे नहीं करेंगे हम, जब नम्र नहीं रहेंगे, नम्र मतलब सबको प्रणाम करना ऐसे नहीं है, वो भी हो सकता है, पर नम्र मतलब जब भी मतभेद हो गए तो भी हम तुम्हारे काम से, तुम्हारे प्रेरणा से कार्य करो, मैं मेरे प्रेरणा से कार्य करूँगा, और जब तुम्हारी प्रेरणा से मुझे कुछ विचलित होता है तो मैं वो सहन करूँगा, मेरी प्रेरणा से तुम विचलित हो रहे हो तो तुम भी सहन करो, जब ऐसे करेंगे तो कीर्तनीयता सदा हरि कर पाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम कीर्तन करेंगे पर हरि का नहीं कीर्तन करेंगे, हरि भक्तों की निंदा का कीर्तन करेंगे, ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है, और फिर भक्तों का समाज जो है, भक्त समूह जो है वह बहुत ही नकारात्मक भावनाओं से भर जाएगा। पर जब हम सब सेवा करते रहते हैं तो फिर क्या होता है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है, तो हम अगर हम दूसरों में सेवा का भाव देखने प्रयास करते हैं। मैं एक और प्रसंग के साथ अंत करूँगा, मैं पिछले साल पहली बार अमेरिका गया था, और मेरे भक्ति के कई धारणाएँ थी, तो तभी मैं अमेरिका में एक वरिष्ठ प्रभुपाद जी के भक्त शिष्य से मिला, और वो जब उनसे घर उनके घर में मिलने गया तो उन्होंने शॉर्ट्स पहने थे, टी शर्ट पहना था, और उनके घर में एक बड़ा कुत्ता था उनका, तो मैं तो ये सब देख के थोड़ा अचरज में पड़ गया, ये क्या हो रहा है, ये तो भक्त ही लगे, भक्त का कुछ लक्षण ही नहीं है, तो पूरा पाश्चात्य व्यक्ति जैसे वैसे ही व्यक्ति है। पर उसके बाद में जब मैं बात करने लगा उनसे तो फिर उन्होंने बताया था कि वो और तमाल कृष्ण महाराज बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, और वो बोले, वो जब बताया था कि तमाल कृष्ण महाराज से सेवा कर रहे थे, इतने उत्साह से बताया थे उन्होंने ये किया वो किया वो किया, और हम सब यहाँ पे गए थे, इतने महान भक्त थे, और वे बोले तमाल कृष्ण महाराज जब वो उनका एक्सीडेंट हो गया, वो गुजर गए, बोले वो मैं 3 दिन तक मैं न खाया न सोया, सिर्फ रो रहा था, और जब इससे से बोले तभी वो रोने लग गए, तो तभी ये एक भक्त के बड़े कितना स्नेह है, कितना स्नेह है वो। और तभी मुझे याद आया चैतन्य चरितामृत प्रसंग है पुंडरीक विद्यानिधि का, पुंडरीक विद्यानिधि बड़े ऐशो आराम में रह रहे थे, वो अपने सिर को बालों को तेल लगा रहे थे, और फिर कुछ आभूषण लगा के खुद को आईने में देख रहे थे, सुपारी खा रहे थे, और कब मुकुंद वहाँ पे आ गए, मुकुंद बोलने लगे कि ये कैसे भक्त है, कैसे भक्त, ऐसे भी भक्त होते हैं क्या? अभी वो मुकुंद जो थे सन्यासियों के बीच में रह रहे थे, वो चैतन्य महाप्रभु सन्यासी वैराग्य का मूर्तिमान रूप थे, ऐसे कैसे भक्त हो सकते हैं, पर जब उन्होंने देखा, जब उन्होंने एक कृष्ण लीला के बारे में श्लोक सुना, तो क्या हो गया, ऐसे भाव विभोर हो गए वो। तो उनको सोचा गया ऐसे भावना तो मुझे भी नहीं आती है, उनको लगा मैं वास्तव में अपराध कर रहा हूँ। तो हमें किसके हृदय के अंदर कितनी भक्ति ये पता नहीं है। तो इसीलिए अंग्रेज में कहते बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, कि हमें ऐसे बेहतर है सावध रहना अच्छा है ना कि गलती करना उसका पश्चाताप करना। तो हमें दूसरों को जज नहीं करना है, दूसरों के हृदय में कितनी भक्ति है हमको पता नहीं है, अगर नहीं होगी तो फिर भगवान उसको सुधार देंगे, पर होगी तो फिर मेरा अपराध हो जाएगा। तो बेहतर है कि मैं भक्ति कर, मेरे लिए अनुकूल है मैं भक्ति करूँगा, दूसरों को दूसरे किसी पद्धति से भक्ति अनुकूल है तो उस तरह से भक्ति करेंगे। तो इसलिए मुझे, हमें किसी को जज नहीं करना है, हमें क्या कर देखना है कि मुझे किस तरह से मैं भक्ति कर सकता हूँ। दूसरे अलग अलग पद से अलग पद कर रहे हैं, उनको उस तरह से करने दो। उस तरह से हम जब भक्ति करेंगे तो क्या होगा, हम भगवान मन लगा पाएंगे। नहीं तो कीर्तनी सदा हरी जो है कर ही नहीं पाएगा, अरे ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है। तो उस तरह से हमारे वो कभी कभी होगा कि वो जैसे भी कार्य कर रहे हैं वो भक्ति कर रहे हैं उसमें मन लगा रहे हैं, पर हमारा मन नहीं लग रहा है उसमें, हमारा मन कृष्ण कीर्तन में नहीं लग रहा है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए व्यवसाय आदमी का बुद्धि एक ही है, गुरु मैं यहाँ पे भक्ति करने के लिए आया हूँ, मैं भक्ति करते रहूँगा और जो मेरे लिए अनुकूल है मैं स्वीकार करूँगा, जो प्रतिकूल है उसे दूर रहूँगा मैं। और सार में चर्चा की आज की, किस तरह से हम मतभेदों के बीच भी साथ में रह सकते हैं। तो मैंने कृष्ण बलराम के लीलाओं का वर्णन किया, कई बार उनमें अलग अलग भेद हुआ करते थे, खासकर दुर्योधन के बारे में बहुत भेद हुआ करते थे, कभी कृष्ण बलराम जी की मजाक करते थे, फिर भी वो भेद होते हुए भी वो साथ में हमेशा रहे। फिर हमने चर्चा की उसके बाद में कि किस तरह से भले ही हम सब में अनेक मतों में सामने हो, फिर भी अनेक मतों में भेद भी हो सकता है। तो सिर्फ भेद को देखना ये रजोगुण का लक्षण है, समानता को देखना ये सात्विक ज्ञान है, और समानता के साथ भगवान से संबंध देखना ये दिव्य ज्ञान है। और जब हम भक्ति कर रहे हैं तो फिर जो तत्व है और जो प्रवृत्ति है या पसंद है, तो तत्व में कुछ भेद नहीं होता है भक्तों में, और पसंद में भेद होता है। पर क्यों, क्या होता है, हम ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिनका तत्व में कोई भेद है ही नहीं, तो हम पसंद में जो भेद है उसमें बहुत, पसंद या प्रवृत्ति में जो भेद, प्रेरणा में जो भेद है उसको बहुत जोर दे देते हैं। पर दुनिया की तुलना से देखे गए तो अधिकांश चीज़ें सब भक्तों में एक है, तो जो जो फर्क है वो बहुत छोटा सा फर्क है, उसको इतना जोर देने की जरूरत नहीं है। तो हर एक भक्त जो होता है, हर एक भक्त अपना स्वभाव होता है, अपनी पार्श्वभूमि होती है, अपनी क्षमता होती है, उसके करुणा उसके अनुसार वो सेवा करने वाले, उसके अनुसार साधना में जोर देने वाले। तो हम ये समझते हैं कि जो भी भेद है अधिकांश रूप से वो किस प्रेरणा प्रवृत्ति या पसंद में होते हैं, तत्व में भेद नहीं है। तत्व में समानता देख के हम जो भेद है उसको कम ज़्यादा ज़्यादा उस पर जोर नहीं देना है। और फिर हम देखेंगे भक्ति में जो किसी को लगेगा तत्व में भेद हो रहा है, पर तत्व में भेद नहीं है, तत्व में भी अलग अलग प्रकार के मूल्य होते हैं। और कोई व्यक्ति है कॉन्फॉर्मिटी, जैसे पहले है वैसे ही सब कुछ रखना, उसको जोर देना है। कोई व्यक्ति आजकल के समाज के संवेदनशील होना, सेंसिटिविटी पर जोर दे रहा है। अभी दोनों भक्ति में ही है, दोनों भक्ति पे ही जोर दे रहे हैं, भक्ति का ही मूल्य है, पर भक्ति में भी अलग अलग मूल्यों पर जोर दिया जा सकता है। हम चैतन्य महामहिम तीन उदाहरण दिया शास्त्रों से भी, किस तरह हमारी परंपरा से इस तरह से संवेदनशीलता भी महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु कैसे ब्राह्मण संस्कृति के खिलाफ नहीं गए थे हरिदास ठाकुर के साथ, और वाराणसी में भी भक्ति विनोद ठाकुर ने न केवल अंग्रेजी में ग्रंथ लिखे, पर उसके साथ साथ उन्होंने अब जो अंग्रेजी पद्धति थी कादंबरी उसको इस्तेमाल किया। प्रभुपाद जी जब वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप का कीर्तन का जो सुख है वो बोल रहे थे, वह उन्होंने LSD की तुलना करके बताया। तो यह सब संवेदनशीलता पर जो जरूरी जोर है वो दिखाया गया इससे। और फिर अंत में हमने देखा किस तरह से कि जब हम सेवा कर रहे हैं तो लीड और फॉलो और गेट आउट ऑफ द वे, अगर हमें कुछ करने की बहुत प्रेरणा है तो हम नेतृत्व कर सकते हैं, हमको वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन के साथ हम प्रेरणा लेकर कुछ सेवा कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम किसी के अनुयायी बन के सेवा कर सकते हैं। पर क्या हमें नहीं करना चाहिए कि दूसरों के काम में हमेशा पैर अड़ाना नहीं चाहिए हमको, गेट आउट ऑफ द रास्ते से बाहर आते हैं। अगर वो जो कार्य कर रहे हैं अगर हमको लगता है गलत है वो, तो हम उनको या उनके वरिष्ठों को बता सकते हैं, पर एक बार बता दिया उसके बाद में बार बार उसमें गलती नहीं निकालनी है। देखा कि कैसे कृष्ण और अर्जुन का भी संबंध होता है, तो कभी अर्जुन कृष्ण की बात मान लेते हैं, कभी कृष्ण अर्जुन की बात मान लेते हैं, और उसके बाद में पूरी एक बार बात मान ली तो पूरे सहयोग से कार्य करते हैं। और अगर हम समझते हैं कि मैं यहाँ पे भक्ति करने के लिए आया हूँ और मुझे जिस तरह से भक्ति करनी है उसके लिए मैं मेरा स्पेस, मेरे लिए मैं अनुकूल जगह बना लूँगा, अनुकूल सेवा ढूंढ लूँगा और अनुकूल पद्धति से मैं कार्य करूँगा, तो सारी दुनिया को ठीक करने का, सारे भक्त समाज को ठीक करने का मैंने ठेका नहीं लिया है। मुझे क्या करना है, खुद भक्ति करनी है और दूसरे के मूल्यों के अनुसार वो भक्ति करते रहेंगे। प्रभुपाद जी ने अनेक उपदेश दिए हैं, मुझे शायद एक उपदेश मूल्यवान लगेगा, किसी और कोई और उपदेश मूल्यवान लगेगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा सभी योग करो, तो इसीलिए अगर कोई अलग मुझे लग रहा है कोई गलत कर रहा है तो वो उनमें और प्रभुपाद जी के बीच में, उनमें और कृष्ण के बीच में है, मैं मेरी प्रेरणा से सेवा करूँगा। और इस तरह से करेंगे तो हम जो हरिभक्त निंदा का कीर्तन है वो नहीं करेंगे, वो उसकी जगह हम कृष्ण कीर्तन में लग के हम सुखी रहेंगे और हम दूसरों के लिए संतुष्टि और सुखी के मार्ग में अग्रसर बना सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी कोई सवाल है या कोई कमेंट? यस, हमारा जो मत है वो छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। हम एक ही जैसा हमारे स्वभाव उसके अनुसार हम विचार करते हैं, तो दूसरों का मत भी सही हो सकता है, यह हम कैसे समझ सकते हैं? रविंद्र स्वरूप प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य हैं, उन्होंने एक लेख लिखा है इस्कॉन के इतिहास के बारे में। वो बोलते हैं उसमें कि नियोफाइट डिवोटीज और कनिष्ठ अधिकारी वो दूसरे भक्तों के बारे में बात करते हैं, मध्यम अधिकारी दूसरे भक्तों से बात करते हैं। मतलब मुझे लगता है कि इसने कुछ गलत किया है, तो जो कनिष्ठ होता है वो क्या कहता है, अरे उसने वो गलत किया, पता है, अरे उसने वो गलत किया, उसने वो गलत किया। और हम भी क्या करते हैं, एक दूसरे में बात करके नकारात्मकता निकालते रहते हैं, नकारात्मक भाव। पर जो मध्यम अधिकारी भक्त है, अरे ये भी बुद्धिमान है, मैं भी इस ये जो भक्ति है ये भी प्रामाणिक भक्त है, तो मैं सीधा उनको जाके पूछ लेता हूँ, आप ये ऐसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ऐसे नहीं है डायरेक्टली, ऐसे चुनौती के भाव में नहीं, पर एक जिज्ञासा के भाव में, स्पष्टीकरण के रूप में। और वो जो समझाएंगे, हम सवाल पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। और फिर इस हद तक कई बार ऐसा होता है कि हम जब कोई कुछ कर रहा है उनसे बात कर लेंगे तो कि हम कम से कम सम थिंग्स मे नॉट बी एग्रीएबल बट दे मे एटलीस्ट बी इंटेलिजिबल। मैं इसको सही नहीं मानता पर ये ऐसे विचार क्यों करते हैं, ये तो कम से कम समझ में आ गया मुझे। कभी कभी क्या होता है, ये कैसा सोच भी कोई सकता है, ऐसा समझ में नहीं आता है। तो ऐसे नहीं है कि सारे भक्त समाज में हर चीज़ हमको स्वीकार ही करनी है कि ये सही है, पर ठीक है, हाँ ऐसे इस कारण तुम ऐसे सोचते हो, ठीक है, मान मैं ऐसे कर करता हूँ इसको। तो बेहतर है कि अगर हमको समस्या हो रही है, किसी कोई किस तरह से कार्य कर रहा है, किसी का मत इस तरह से, तो उनकी पार्श्वभूमि हम समझ सकते हैं, उनसे स्पष्टीकरण करके उचित पद्धति से स्पष्टीकरण कराना है, पर वो कर लेते हैं, तो उससे हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति ऐसा विचार क्यों कर रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को हमें हर चीज़ में एग्रीमेंट, उनकी बात हमको सही लगनी चाहिए, हम कम से कम ये समझ सकते हैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं, ऐसा विचार क्यों आ रहा है उनके मन, ऐसे मत कैसे हो सकता है, उतना भी समझ जाएंगे तो हम उनका जी सकते हैं। तो इसलिए ये डायरेक्टली उनसे स्पष्टीकरण करना अच्छी बात है, इससे पूछो, उससे पूछो, उससे पूछो, या इससे पूछो नहीं, इससे बात करो, उससे बात करो, उससे नकारात्मकता बढ़ जाती है। अगर उनसे हम पूछ नहीं सकते हैं तो उस व्यक्ति के वरिष्ठ जो है, ऐसा कोई व्यक्ति जिनसे जो उनको भी जानते हैं, जो हमें भी जानते हैं, उनको जाके पूछ सकते हैं और उनसे थोड़ी समझ प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से हम अगर उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं तो फिर उनका मत भी हम समझ सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो द स्पिरिचुअल इज द गोल ऑफ द कल्चरल, इज द गोल ऑफ द सोशल, इज द गोल ऑफ द इंटेलेक्चुअल, बट द स्पिरिचुअल इज नॉट द सेम एज द कल्चरल, द सोशल, द इंटेलेक्चुअल। मतलब क्या, जो आध्यात्मिक है, हमारे जो सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक प्रवृत्ति है, उनके द्वारा हमको आध्यात्मिक प्राप्त करते हैं, पर हमारी जो अभी मेरा बौद्धिक स्तर और किसी और का बौद्धिक स्तर अलग हो सकता है, मेरे सांस्कृतिक पार्श्वभूमि और किसी और की सांस्कृतिक पार्श्वभूमि अलग हो सकती है। तो इसीलिए वो किस पार्श्वभूमि से आ रहे हैं उससे उनका दृष्टिकोण काफ़ी बदल सकता है। तो इसीलिए वो पार्श्वभूमि हमें समझना चाहिए कि वो उनकी पार्श्वभूमि भले ही अलग हो सकती है, उसी कारण वह वही सत्य को दूसरे दूसरे देख रहे हैं। भक्तिनाथ ठाकुर के चैतन्य शिक्षामृत बताते हैं कि अगर हम परम सत्य को एक पहाड़ के शिखर के रूप में देखते हैं, तो कहते हैं कि पातंजलि ने उसको शिखर को एक दूसरे देखा है, एक दिशा से देखा है, प्लेटो ने उसी सत्य को दूसरी दिशा से देखा हुआ है, और उनकी दृष्टि से देख कर उन्होंने अपनी संस्कृति के अनुसार, अपनी भाषा के अनुसार, अपने समय के अनुसार उसी एक परम सत्य का वर्णन किया है। तो यह जो है परम सत्य के बारे में तत्व ज्ञान का है, पर वही व्यावहारिक ज्ञान में भी हम ला सकते हैं कि क्या है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं, वो एक पहाड़ है, मैं उस पहाड़ को इधर से देख रहा हूँ और वो उधर से देख रहे हैं, और मुझे वो उधर से क्या दिख रहा है पता ही नहीं, क्योंकि उधर से क्या दिख रहा है मैं देखा ही नहीं उधर से। तो अभी शायद मेरे लिए ज़रूरी है, अगर उस व्यक्ति के साथ रहना है, व्यक्ति के साथ काम करना है, तो मुझे मेहनत करके पहाड़ के उस पार जाना पड़ेगा, और अगर वो ज़रूरी नहीं है मुझे इतना, तो फिर मैं ठीक है वो उस तरह से देख रहा है, चलो वो उस तरह से देख रहे हैं, मैं इस तरह से देख रहा हूँ, हम आगे से करते रहते व्यक्ति। तो जब किसी का मत हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे नहीं है कि हमें हमारा मत बदलना ज़रूरी है। इसमें इंग्लिश में कहते हैं वी कैन एग्री टू डिसएग्री, कि हाँ इस मत में सहमत है कि हमारा मतभेद है, ये तुम्हारा मत है, मेरा मत है, एंड हम ठीक, हम उसके अनुसार ये रहे। तो कभी कभी हम उनका मत समझने का प्रयास कर सकते हैं, कभी कभी वो हमारा मत समझने का प्रयास करेंगे, और कभी कभी अगर वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर हम हमारा जीवन आगे चला सकते हैं, और उसमें उनकी दृष्टि हम नहीं समझ सकते, उनको वो किसी और दृष्टिकोण से देख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या दृष्टिकोण है ये, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे समझना चाहिए वो। क्योंकि क्या है कि भगवान बहुत बड़े हैं, भगवान की भक्ति बड़ी विशाल है, और अलग अलग व्यक्ति अलग अलग पार्श्वभूमि से आके भक्ति कर रहे हैं। डज इट आंसर एड्रेस योर क्वेश्चन? कोई और सवाल है किसी का?
तो हो सकता है कि उनकी जो कार्य प्रणाली वो अलग तरीके से करते हैं, जब तक वो हमारे सेवा में प्रभाव नहीं करते या फिर हमको इनकन्वीनियंस नहीं होती, तब तक वो सहन करना मतलब, लेकिन जब हमारी सेवाओं में इनकन्वीनियंस होता है या हमको परेशानी होती है, तब फिर उनको मतलब उस चीज़ को सहन करना, उनके बेच उनका प्रोसेस नहीं करना, फिर उसके लिए करते हैं।
हाँ यस, तो अगर कोई व्यक्ति अपने पद से सेवा कर रहे हैं और उससे हमको सेवा में व्यत्यय होता है, हमें सबसे हमारी सेवा में समस्या आती है, तो हमें क्या करना चाहिए उस समय? इसमें कैसे है कि ये देश काल पात्र के अनुसार हमें फैसला करना है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ भक्तों में कुछ क्षमता होती ही नहीं है, कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, पहले ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, हम इसकी योजना बनाते हैं, ये टाइम टेबल बनाते हैं, ये शेड्यूल बनाते हैं, और कुछ भक्त है उनका वो कोई स्वभाव ही नहीं है, तो अभी अच्छा है कि वो स्वभाव ला सके, और सब कुछ अच्छी तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड इज व्हाट नियमबद्ध नहीं, आयोजित पद्धति से कर सके। पर अगर किसी का स्वभाव नहीं है वैसे, तो फिर वो व्यक्ति कितना स्वभाव बदल सकता है वह हम उस पे जोर नहीं दे सकते। मतलब क्या है कि फ्रस्ट्रेशन इज अ फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन, जितना मेरा अपेक्षा होती है उतना मेरा मैं हताश भी हो सकता हूँ उस अपेक्षा से। तो कभी कभी क्या करना चाहिए हमको, जब जब हमारी सेवा के लिए महत्वपूर्ण है, तो फिर हम हमारे वरिष्ठ के पास जाके बोल सकते हैं कि ये ऐसा कर रहा है, इसका मुझे समस्या हो रही है, तो शायद आपको बोले कि ठीक है आप ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आप उनको ये दे सकते हैं, आप ये दे सकते हैं। तो क्या है कि प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से कभी कभी कोई चीज़ हमारे लिए बड़ी आसान हो सकती है पर दूसरे किसी व्यक्ति के लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो इसीलिए हमें दूसरों से क्या अपेक्षा रख सकते हैं यह कभी कभी हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये एक दूसरे से हमारा एडजस्टमेंट है, पर सब कुछ एडजस्टमेंट हमें ही करना ऐसे नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमारे लिए ज़रूरी है वो, और अगर कोई व्यक्ति वो नहीं बहुत ही कोई व्यक्ति वो नहीं कर पा रहा है तो ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति उस सेवा के लिए सूटेड नहीं है। तो फिर हम हमारे वरिष्ठ को तो बोल सकते हैं हमें यहाँ पे हम उस व्यक्ति उस भक्त का शिकायत नहीं कर रहे, हमारा भाव उस भक्ति को तो शिकायत नहीं करना है, हमें हमारी सेवा करनी है और सेवा में हमें व्यत्यय आ रहा है तो कैसे निकालना है उसके लिए कुछ योजना कर सकते हैं। तो ये एक मतलब एक यहाँ पे तत्व है और एक व्यवहार है। तो तत्व के रूप में हमें समझना है कि सबसे मैं उसी प्रकार की अपेक्षा नहीं कर सकता। व्यवहार के रूप में मुझे देखना है कि मुझे क्या ज़रूरी है, क्या अनिवार्य है, और अगर वो नहीं है तो मुझे या तो मैंने पिछले रविवार के वचन बताया था तीन चीज़ें होती हैं, या तो हम दूसरों को परिवर्तित करते हैं, हम खुद को परिवर्तित करते हैं, या परिस्थिति को परिवर्तित करते हैं। उसमें से कौन सा करना है वो हमारे वरिष्ठों से मार्गदर्शन करके लेकर हमारी बुद्धि से उस भक्त से बात उस भक्त से भी डिस्कशन करके बातचीत करके फिर फैसला कर सकते हैं। तो आंसर योर क्वेश्चन क्या
खास करके इंडियन सेटिंग्स की बात करते हैं तो जैसे एक डिवोटी मुंबई के उन्होंने फ़ोन किया तो उसमें बैकवर्ड क्लास है तो वो भी हमारे तो उन्होंने मैरिज ब्यूरो में उनका फॉर्म दिया शादी में उनको पहले ये क्वेश्चन किया गया कि आप किस कम्युनिटी से तो उनको वो बुरा लग गया कम्युनिटी की क्या जरूरत है आप तो डिवोटी कम्युनिटी से उनको वो वही क्वेश्चन दो तीन बार पूछे तो उनका मत ये था कि भोपाल ने तो हमें कभी ये पूछा नहीं कि आप कौन से कम्युनिटी से हमको जहाँ पर हर रोज ये सिखाया जाता है कि सब इक्वल है और उनकी प्रीवियस बैकग्राउंड में नहीं देखना चाहिए तो वो ये पूछ रहे थे कि मैं क्या करूँ व्हाट स्टैंड आई शुड टेक वो उनका स्टैंड छोड़ने के लिए तैयार नहीं और मेरा जो अंदाजा है कि
तो अगर कोई व्यक्ति है उसको ऐसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं जो उसको लगता है कि जो प्रभुपाद की शिक्षाओं में उस पर कभी जोर नहीं दिया गया है तो कोई विवाह करना चाहता है उसके लिए मैरिज ब्यूरो में पूछते हैं कि आपके आपका कम्युनिटी क्या है, आपका कास्ट क्या है, तो उसको लगता है कि ये शारीरिक चेतना भी क्यों बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है ऐसे। तो वास्तव में यहाँ पे दो चीज़ें हैं। सी यू आर नॉट द बॉडी, दिस इज़ अ वेरी हाई रियलाइजेशन, ये बहुत ऊँचा साक्षात्कार है। अभी हर स्तर पर हमारे स्तर पर हम जो शुरुआत करते हैं क्या है, हम इसी तरह से बात कर सकते आई एम मोर देन माई बॉडी, आई एम नॉट माई बॉडी, ऐसे मैं जी नहीं सकता हूँ। अगर मेरा हाथ टूट गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि हाथ को ठीक करना पड़ेगा, तो आई एम मोर देन माई बॉडी मतलब शरीर की ज़रूरतों को पूरे करने में मेरा सारा ज़िंदगी नहीं डालना है, मुझे शरीर की ज़रूरतों के ऊपर भी कुछ है और वो भी मुझे कार्य करना है। तो द जर्नी टूवर्ड्स रियलाइजिंग आई एम नॉट माई बॉडी बिगिन्स विथ अंडरस्टैंडिंग आई एम मोर देन माई बॉडी। तो मैं मेरे शरीर से और कुछ हूँ, इससे हम शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद में मैं शरीर नहीं हूँ, हम इस तक पहुँचते हैं। भगवीता में भी हम देखते हैं ये कि दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में अर्जुन को बोलते हैं भगवान देहिनोस्मि यथा देह, कि तुम वास्तव में इस शरीर में आत्मा है, वास्तव में वो तुम हो। और उसके अगले ही श्लोक में 14वें श्लोक में भगवान दो बार अर्जुन को संबोधित करते हैं उनके शारीरिक संबंधों के द्वारा, मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय, अभी अर्जुन शरीर नहीं है तो कुंती का पुत्र कैसे हो गया वो, तो स्पर्शस्तु कौंतेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम आपायनोत्य स्थान से दीक्षा स्व भारत, भारत मतलब भरत वंश में है, तो अभी अगर शरीर नहीं तो भरत वंश में कहाँ से आ गया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य बोलते हैं कि आप जिस वंश में हो उस वंश की, अगर वो बड़ा, वो महान वंश है तो उससे एक जिम्मेदारी आती है, और अर्जुन को जिम्मेदारी से कार्य करना है, और जिम्मेदारी से कार्य करना मतलब आत्मा के ज्ञान के अनुसार आध्यात्मिक जिम्मेदारी के दृष्टि से कार्य करना है। मतलब प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, या कृष्ण क्या कर रहे हैं कि अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान तो दिया, पर आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार जीने के लिए, प्रवृत्त करने के लिए वो जो भौतिक संबंध है उससे भी प्रेरणा दे रहे हैं, उससे उनको प्रेरणा दे रहे हैं। अच्छा, ये आत्मा के सर पर जीना आसान नहीं है, पर तुम जो कठिन कार्य कर सकते हो, तुम एक महान वंश से हो, तुम एक महान स्त्री के पुत्र हो, इस तरह से। तो शारीरिक संबंध और शारीरिक पहचान जो है उसको हम ठुकराते नहीं हैं, पर उसको हम इस तरह से करते हैं कि वो हमारे भक्ति के अनुकूल बन जाए। प्रभुपाद जी जब भारत में प्रवचन देते हैं एक बार, तो वो जुहू में प्रवचन, जुहू मंदिर जब बन रहा था, प्रवचन दे रहे होते, तभी वो भारतीयों से कहते हैं ये सारा जो ज्ञान है ये भारत का, भगवद्गीता भारत का ही ज्ञान है, और अगर आप ये ज्ञान प्रचार करते हो तो सारे दुनिया में बड़ा मार्केट है। प्रभुपाद जी बोलते हैं बड़ा मार्केट है, और आप चिंता कर रहे हैं कि एक पाकिस्तान चला गया, प्रभुपाद जी बोलते हैं आप भगवद्गीता का प्रचार करो, सारा दुनिया हिंदुस्तान बन जाएगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं दुर्भाग्य ये है कि दुनिया भर में भारतवासी जाके भगवद्गीता का प्रचार करने की बात तो छोड़ो, मुझे भारत में भगवद्गीता प्रचार करने के लिए अमेरिका से लोग लाने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, भारत कोई बोले अरे तुम भारतीय हो ही नहीं, भगवद्गीता का संदेश है, भारतीय अमेरिका प्रभुपाद जी बात क्यों कर रहे हैं। क्या है यहाँ पे, प्रभुपाद जी भारतवासियों को भगवद्गीता का ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए प्रेरणा कर रहे हैं। तो ये जो हमारी भौतिक आइडेंटिटी है, भौतिक पहचान है, उसको अगर भक्ति की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो कुछ गलत नहीं है। उस तरह से वहीं पे कुछ दिनों के बाद प्रभुपाद जी जब आई थिंक 1971 में जब उन्होंने बड़ा हरे कृष्णा फेस्टिवल किया था, तो जब उसकी योजना हो रही थी, तो प्रभुपाद जी ने अपने अमेरिकी शिष्यों को बोला कि सारी दुनिया अमेरिका का बड़ा गुणगान करती है कि अमेरिका का बहुत प्रगतिशील है, अमेरिकन लोग बहुत बुद्धिमान है, बड़े आश्चर्यजनक कार्य करते हैं, तो अभी तुमको ऐसा फेस्टिवल बनाना चाहिए कि भारत में कभी ऐसे फेस्टिवल देखा नहीं है, और अगर तुम ऐसे नहीं करो तुम्हारा अमेरिकन होने का क्या फ़ायदा है। यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, वो अमेरिकन जो पहचान है उसको भक्ति सेवा में इस्तेमाल कर रहे हैं, भक्ति भक्तों को सेवा में लगाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, उसके द्वारा प्रेरणा दे रहे। तो हमारी भौतिक पहचान को हम पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते हैं, उसको हमें जोड़ना है भक्ति की सेवा, भक्ति में सेवा में। तो अगर हम प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को देखते हैं तो उसमें कई जगह पे हम देखते हैं, शुरुआत में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम सब भक्त हैं और हमारी कोई भौतिक चीज़ें संबंध नहीं है, भौतिक भौतिक चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। लगभग 1977 तक प्रभुपाद जी के प्रवचन में, खास करके प्रवचन कन्वर्सेशन में अगर देखते हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अभी भक्ति ही करनी, कृष्ण कॉन्शियसनेस करना है और दिवस स्तर पर जाना है। पर 1970 के बाद प्रभुपाद जी का जो बात है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आप सब ट्रांसजेंडेंटल हो तो सन्यासियों को पतन क्यों हो रहा है, अगर आप सब ट्रांसजेंडेंटल हो तो जो विवाह है विवाह को टूट रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं यू ऑल ऑफ यू नीड अ मटीरियल सपोर्ट, और फिर वो वर्णाश्रम के बारे में 1970 के बाद में प्रभुपाद जी कन्वर्सेशन में वर्णाश्रम काफ़ी जोर दे रहे हैं। अभी वर्णाश्रम मतलब ऐसे नहीं है कि समाज को चार वर्णों में विभाजित करना, वर्णाश्रम का भाव ये है, वर्णाश्रम का एक फॉर्म है और एक इंटेंट है, एक रूप है और एक उद्देश्य है। तो रूप है कि वो चार वर्णों में समाज को विभाजित करना, पर उसका उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति का भौतिक जीवन इस तरह से नियोजित करना कि वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल हो जाए। तो जो बुद्धि बौद्धिक स्तर का व्यक्ति है, बौद्धिक प्रवृत्ति व्यक्ति है, उसको ब्राह्मण का कार्य दो, उसके द्वारा वह उसका जो भौतिक, उसका जो जीवन है, उसकी भौतिक प्रवृत्ति उसके आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल हो सकती है। तो अभी वो व्यावहारिक रूप से कैसे करेंगे, वह अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग हो सकता है। तो पहले जो विवाह होते थे, इसको भी कई बार विवाह होते थे, तो प्रभुपाद जी बोलते थे ठीक है, ये लड़का, ये एक शिष्य बोलते तुम इससे विवाह कर लो, उन्होंने दूसरे देखा भी नहीं होता है वो विवाह कर लेते थे। तभी कुछ विवाह भक्त अपने समर्पण के भाव से वो रह सके, पर अनेक विवाह जो नहीं टिक पाए। क्योंकि क्या है, पाश्चात्य देशों में ये ऐसा भाव नहीं है कि मैरिज इज़ फॉर लाइफ टाइम, अगर विवाह कर ले तो ज़िंदगी भर, अगर नहीं काम नहीं चाहते तो छोड़ दो उसको, ऐसे भाव थे। तो भाव भक्तों में भी था। तो फिर क्या हुआ, प्रभुपाद जी बोले ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे कैसे कर सकते आप। तो फिर तभी उसके बाद में तो कंपैटिबिलिटी है, कंपैटिबिलिटी मतलब वो दोनों का जमता है कि नहीं, दोनों की विचारधारा कैसी है, दोनों की संस्कृति कैसी है, वो सब देखना, वो उसको भी महत्व देने लग गए। बेसिकली क्या है कि दोनों कृष्ण भक्त है या आध्यात्मिक है, पर उसके साथ साथ भौतिक भी संबंध में प्रभाव होता है। तो अभी कौन किस चीज़ पे कितना जोर देगा, अभी हम कह सकते हैं कि अभी हमको कभी कभी पूछते हैं कि क्या आप हिंदू हो, तो अभी हम कहेंगे कि हम हिंदू नहीं हैं, हाँ हम कृष्ण भक्त हैं और कृष्ण भक्त दिव्य हैं, ठीक है, ये एक स्तर का जवाब है। पर अगर दुनिया में जो धर्म है उसमें अगर हमको कहीं बताना है, तो हम यह तो नहीं कह सकते हैं मुस्लिम हैं। हम एक तरह से कह सकते हैं कि वृंदावन इस भौतिक जगत में नहीं है, पर वृंदावन अगर दुनिया के नक्काशे पर कहीं दिखाना है तो चाइना में तो नहीं दिखा सकते हम, हमको भारत में दिखाना है। भले ही वो दिव्य भी क्यों ना हो, वह इस भौतिक जगत में, अगर हम भौतिक क्लासिफिकेशन, भौतिक विभाजन में हमको कुछ दिखाना है, तो फिर वो भौतिक दृष्टि से हमें देखना पड़ेगा। तो अगर हम कहते हैं आप हिंदू नहीं हो, तो आप कौन से धर्म के हो, अगर हमको पर्याप्त समय है जहाँ पे हम तत्व ज्ञान समझा सकते हैं तो बात सही है, पर अगर इस दुनिया के विभाजन में हमको बताना है, तो हमको जो भौतिक विभाजन है उसके अनुसार कुछ परिस्थिति में बताना पड़ेगा। ये कैसे है कि इसको हम जो पारमार्थिक और व्यावहारिक जो है उसको दोनों को एक नहीं बोल सकते। परमार्थ की दृष्टि से कृष्ण भक्ति दिव्य है, व्यवहार की दृष्टि से कृष्ण भक्ति है हिंदू धर्म का एक अंग है, परमार्थ की दृष्टि से के वृंदावन आध्यात्मिक जगत में है, व्यवहार की दृष्टि से वृंदावन भारत में है, परमार्थ की दृष्टि से प्रभुपाद जी आध्यात्मिक जगत से आए थे, व्यवहार की दृष्टि से प्रभुपाद जी बंगाली थे। जब प्रभुपाद जी बॉम्बे में थे, मैं गिरिराज महाराज से, इसी ये बड़ा विषय है वास्तव में, गिरिराज महाराज से मैं एक बार चर्चा कर रहा था, तो वो बता रहे थे मुझे कि वो उन्होंने देखा कि जो एक आरएसएस के तभी बड़े लीडर, वीएचपी के बड़े लीडर थे, वो प्रभुपाद जी से मिलने आए, उन्होंने जुहू मंदिर के लिए बहुत मदद की थी। तो वो प्रभुपाद जी से बोले कि प्रभुपाद जी आप जो संस्कृत श्लोक बोलते हो वो बंगाली पद्धति में बोलते हो। प्रभुपाद जी मैं क्या करूँ, मैं बंगाली हूँ। तो प्रभुपाद जी बोले कि मैं शरीर में आत्मा हूँ, पर वहाँ पे अगर उनका बंगाल में जन्म हुआ है तो ऐसे नहीं कि बंगाल में जन्म होके वो साउथ इंडियन पद्धति से श्लोक बोलने वाले। तो अभी कोई कहेगा कि उतना ही व्यक्ति की पहचान है, प्रभुपाद जी बंगाली है मतलब बंगाली है, उनमें कुछ दिव्यत्व है ही नहीं, वो गलत है। पर अगर कोई कहेगा प्रभुपाद जी दिव्य है इसीलिए बंगाली है ही नहीं, वो भी सही नहीं है। तो दोनों भाग है। तो हमें व्यवहारिक दृष्टि से देख के आध्यात्मिक दृष्टि को भूलना नहीं है, पर हमको आध्यात्मिक दृष्टि से देख के व्यवहारिक चीज को भी पूरी तरह से नगण्य मानना जरूरी नहीं है। दोनों का हमें एक तरह से दोनों को संतुलन, ओके, समन्वय संतुलन रखना जरूरी है। तो अभी विवाह के समय में अभी जो लड़का है लड़की है सब अलग अलग पार्श्वभूमि से, कौन कितना आध्यात्मिक दृष्टि से सीरियस है ये पता नहीं है। तो इसलिए ये जानकारी के रूप में अगर कोई कहेगा, ये हमें क्या है, क्योंकि भारत में जाति के नाम पे कुछ अत्याचार हुआ है, और उससे बढ़कर जाति के नाम पे अत्याचार के बारे में बहुत सारा बढ़ा चढ़ा के बात बताए गए, दोनों हैं। ये भौतिक स्तर पे मतभेद और अत्याचार तो होते ही रहता है। अगर हम देखेंगे अमरीकी लोग को, यूरोपियन लोग जो अमेरिका में गए, उन्होंने नेटिव अमेरिकन्स पे इतना अत्याचार किया, अत्याचार इतना किया कि वो अभी है ही नहीं अमेरिका में, वो है ही नहीं। जो हजार लाखों के रूप में थे अभी कुछ हजारों के रूप में रह रहे हैं। वैसा तो नहीं है छोटे, वैसा तो नहीं है जो नीचे नीचे जातियों के बारे में भारत में, उनका अंत तो नहीं हुआ है, जी रहे, तो वो अलग विषय है। पर क्या है उसके कारण लोग इसके बारे में हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। किसी को अपनी अपनी वर्ण कौन सा है, अपनी जात कौन सी है पूछे तो उसे लोग बड़ा हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। पर समझना चाहिए कि ये एक फीचर है, ठीक है। अगर आपका शिक्षण क्या है पूछेंगे, आपका डिग्री क्या है, अभी कोई अगर मैं तो भक्त हूँ मेरी डिग्री क्यों पूछ रहे। पर अगर विवाह करना है तो अलग अलग प्रकार से कंपैटिबिलिटी देखी जाती है, एजुकेशनल लेवल देखा जाता है, फाइनेंशियल लेवल देखा जाता है, कल्चरल देखा जाता है। तो कल्चर में हम कह सकते हैं कि ये भी एक चीज़ हो सकती है कि क्या है व्यक्ति का कास्ट पूछना। तो अभी उस पर कितना महत्व देना है किसको, ये व्यवहारिक रूप से अलग अलग वक्त अलग अलग फैसला कर, अलग अलग जोर देंगे। कोई वक्त देखेगा अरे ये तो आध्यात्मिक विषय बहुत गंभीर है, तो कौन से कास्ट का है इसका ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कुछ हो गए उनको नहीं, ये भी उनको ये भी समान है। और क्या है क्योंकि कई बार परिवारों में ऐसे होता है कि वो लड़का या लड़की भक्त हो गए पर बाकी परिवार वाले भक्त नहीं होंगे। और क्या है भारत में संस्कृति अभी तक ऐसी है कि लड़के लड़की हमेशा माता पिता के खिलाफ जाके विवाह करना इतना आसान नहीं है, तो फिर शायद उनको वो लड़के लड़की को तो अपने आप के लिए ठीक होगा, किसी भी वर्ण से होगा उसे विवाह कर सकता, पर माता पिता नहीं मान रहे होंगे तो उससे बड़ा संघर्ष हो सकता है। तो क्या है कि हम जो तत्वज्ञान के स्तर पर जो सीखा हुआ है उसको जो व्यवहारिक सत्य को बिना देखे डायरेक्टली उस पर लाद नहीं सकते हैं। जो आध्यात्मिक सत्य है उसको व्यवहारिक परिस्थिति देख कर उस पर कैसे अमल करना है यह हमें देखना है, नहीं तो फिर हम बहुत असंवेदनशील बन सकते हैं, हम बहुत बहुत समस्याएं पड़ सकते हैं। तो इसीलिए इट इज़ नॉट अगेंस्ट द फिलोसफी। तो कैसे है कि रादर देन जो संस्था या जो इस सवाल पूछे उनको दोष देने के जगह पे हमें समझना चाहिए कि ये मेरी पार्श्वभूमि के कारण मैं इसके बारे में हाइपर सेंसिटिव हो गया हूँ। अगर कोई व्यक्ति यही अगर मान लीजिए, अभी इसमें एक और बड़ी चीज़ है, आई कंक्लूड आंसर विद दिस, कैसे है कि एक है कि संस्था में आना, अगर कृष्ण भक्ति में आने के लिए कोई आपको आपकी जात नहीं पूछने वाला है, सब कोई आप आ सकते हैं, पर कृष्ण भक्ति की संस्था ये एक वॉलंटरी संस्था है और इसमें अगर दो व्यक्ति अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं तो उसमें कोई व्यक्ति पे संस्था जोड़ नहीं सकती है कि आप ये मत देखो। सी मैरिज इज अ वॉलंटरी रिलेशनशिप बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, द इंस्टीट्यूशन इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मैरिज ऑफ इंडिविजुअल्स, द इंस्टीट्यूशन इज फैसिलिटेटिंग। तो अगर कोई संस्था में प्रवेश करने के लिए आप ही जात के आपको नहीं आने देंगे, आपको दीक्षा नहीं मिलेगी, आपको ये सेवा नहीं मिलेगी, आप ही जात, तो फिर वो संस्था की जिम्मेदारी है। पर अगर संस्था के भक्त अगर कुछ करना चाहते हैं, विवाह तो एक जीवन भर का संबंध है वो, तो इस पे संस्था को कुछ नियम नहीं बना सकती है कि इस्कॉन जो है यह एक ये एक प्रेरणा की संस्था है, ये कोई पुलिस स्टेट नहीं है। पुलिस स्टेट मतलब नहीं सबको नियम बनाने का, जो नियम नहीं पाले उसको जेल में डालने का, ऐसे इस्कॉन नहीं कर सकती है। ये एक ब्राह्मणिकल संस्था, एक क्षत्रिय संस्था नहीं है। क्षत्रिय देश का आदेश, देश का ये पालन करते हैं, उसमें गुनहगार को जेल में डालते हैं। तो हमको समझना चाहिए कि मैरिज इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड फॉर सो इट इज नॉट दैट इस्कॉन इज डिस्क्रिमिनेटिंग बेस्ड ऑन द कास्ट, इट इज रादर मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन हु वॉन्ट टू फॉर्म अ रिलेशनशिप, दे विल फॉर्म इट अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस एंड इस्कॉन कैन नॉट लेजिस्लेट दैट। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों को समझना चाहिए और एक को दूसरे पे हमें लादना नहीं है, पर दोनों का समन्वय साधना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्रभुपाद की गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंद। थैंक यू।
जय चैतन्य चरण प्रभु की जय।
प्रभुपाद की जय।